نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تفسير پہ چلنے سے پہلے ہم آج کے سبق کا مین تھیم اور کچھ بنیادی چیزیں جو آج ہمیں پتہ چلیں گے اس پہ بات کریں گے. اس آج پارے کا آخری سبق ہے اور اس ایک لیسن کے اندر پورے پارے کے اندر کی ہوئی نیتیں اور خود کو بدلنے کے ارادوں کا محاسبہ کرنا ہے. ربانی لفظ اگر آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا تو اب آپ کو قرآن پاک کے سفر کے دوران یہ لفظ بار بار سننا پڑے گا. تو یہ سبق ہمیں ربانی بناتا ہے. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنی زندگیاں اسلام پہ لگاتے ہیں پھر مرتے وقت ان کو سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے, اور وہ فکر ہے کہ ہماری نسلوں کا ہمارے بعد کیا بنے گا. ایک اور چیز آج کے سبق میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے. اخلاص کا یہاں بہت تذکرہ ہے. پورے پارے نے ہمیں کم از کم جو بنانا چاہا وہ مخلص تھا, اور کئی جگہ اس کا تذکرہ بھی ہوا, سنا بھی, بات بھی ہوئی. آج انشاءاللہ ہم اس میں دیکھیں گے اور نبیوں کی زندگی کیسی ہوتی تھی اور کیوں ان کے بعد ان کی اولادیں ان سے بھی زیادہ نیکیوں کے کام کرتی تھی, اس کا جواب بھی ہمیں ملے گا. اور اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اولادوں کو ان راستوں پہ چلا دیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کے جاتی ہیں. پھر اس سبق سے آج ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جب دین میں سے اس کی روح نکال دی جاتی ہے, فرقہ واریت میں لوگ پڑ جاتے ہیں, تو پھر لوگ اللہ کا بننے کی بجائے نفس کا بندہ بننے لگتے ہیں. آیتوں کے ساتھ چلتے ہوئے باقی چیزوں کو دیکھیں گے. تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 130 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اور دین ابراہیم سے کون بے رغبتی کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. اتنی لمبی بات ہے. عقل مندی اور بے وقوفی کا معیار فرق معیار بتا دیا, اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے جو بھی بے رغبت ہے, جس کا لائف سٹائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائف سٹائل سے نہیں ملتا, جس کا جینا مرنا ابراہیم علیہ السلام کے جینے مرنے سے نہیں ملتا, جس کی زندگی میں قربانیاں اور ہجرتیں نہیں ہیں, جو صرف اس دنیا کے غموں میں جیتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقوں سے بے رغبتی کرتا ہے. اور لوگ ایسے شخص کو ماڈرن کہیں, لوگ ایسے شخص کو اپ ٹو ڈیٹڈ کہیں, لوگ ایسے شخص کو چاہے دنیا میں کتنا زیادہ کامیاب کہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا من سفیہ نفسہ, یہ شخص تو بے وقوف ہے. ذرا اس کمنٹ کے اوپر غور کریں, اور شکر ہے اللہ کا کہ یہ کمنٹ قرآن پاک میں آیا ہے. میری زبان سے نہیں آپ سن رہے, صرف میں میسج کو کنوے کر رہی ہوں. اصل پیغام آپ کے سامنے اللہ کے رب کا ہے کہ عقل مندی اور بے وقوفی کا فرق دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فرق تمہیں یہاں دکھے گا کہ جس کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں والی ہوگی وہ عقل مند ہے, وہ کامیاب ہے, اور اس کے برعکس والے کا معاملہ دوسری طرف پلٹتا ہے. خیر, اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ خود کون تھے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, اور البتہ بے شک ہم نے اس کو چنا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں بے شک وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. یعنی لوگ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو بے وقوفی سمجھ کے چھوڑ رہے ہیں, لیکن ابراہیم کون تھے؟ امام الانبیاء, دنیا کے بھی کامیاب اور آخرت کے بھی کامیاب. اور یہ وہ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چن لیا تھا. یہ سب باتیں کس سے کہی جا رہی ہیں اور کیوں کہی جا رہی ہیں؟ تو اگر آپ دیکھیں تو پیچھے کتنے رکوع سے بنی اسرائیل کی باتیں ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے تھے یہود بھی اور نصارہ بھی, اور مسلمان بھی آج کرتے ہیں. کل تک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی یہ آپ کے سب سے پہلے مخالف بن گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدینہ کے یہود کو دعوت اسلام جب دلوائی تو ان کا جواب وہ نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے طرف سے یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ یہ اپنے آپ کو عقل مند نہ سمجھے, حقیقت میں یہ بے وقوف ہے. اور اگر آپ انداز پہ غور کریں نا, وہ مئی یا رغبو, یہ بالکل ایسے جیسے اردو میں وہ کہتا ہے اور وہ کون ہے جو بڑا چودھری بنتا ہے, اور وہ کون ہے جو جس کو بڑا اپنی عقل مندی پہ مان ہے. سوال اب ظاہر لیکن انکار ہے. ایسی چیز کو عربی زبان میں کہتے ہیں استفہام برائے انکار. لفظ مشکل ہے اس لیے اس کو نہ سمجھے, لیکن میں آپ کو بات کرنے کے انداز سے سمجھا سکتی ہوں کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے. اب ایک سوال ہے نا کہ میں آپ سے ارادہ پوچھ رہی ہوں, اور اگر میں آپ کو اس سے پوچھوں کیا ارادے ہیں آپ کے, تو دیکھنے میں یہ بھی سوال ہے نا, لیکن میری ٹون آپ کو بتا رہی ہے کہ میں تھوڑا سا طنز کا انداز رکھتی ہوں. ہاں, اور اگر میں دیکھوں کہ کہیں جانا ہے اور بچے ابھی اٹھ ہی نہیں رہے اور ابھی تک کوئی تیاری نہیں کر رہے, تو میں کہوں گی کیا ارادے ہیں آپ کے, تو مطلب یہ ہے کہ میں انکار کر رہی ہوں کہ آپ نہیں جانا چاہ رہے تبھی نہیں اٹھ رہے. یہاں یہ آخری انداز ہے کہ وہ من اس طرح سے یرغبو, رغبت والا. اور عربی زبان میں رغبت ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں پٹ. آپ دیکھیے پٹ کا معنی کیا ہے, ڈالو, پٹ ان, پٹ آف, فرق معنی بدل جاتا ہے نا. سائن کا لفظ سائن کرنا, سائن ان, سائن آؤٹ. تو پریپوزیشن کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں نا. سائن ان کیا ہے, آپ نے آتے ہوئے جو بھی اپنے سائن کیے, اور سائن آؤٹ کیا ہوتا ہے, جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کیا آؤٹ کیا. بالکل اسی طرح سے رغبہ کے بعد جب الا یا فی, یہ دو پریپوزیشن ہے عربی زبان کے, الا ٹوورڈز کے معنوں میں, فی ان کے معنوں میں, جب یہ معنی ہو تو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش اور آرزو رکھنا. ٹھیک ہے, یعنی رغبت ہے مجھے اردو میں, جیسے ہم کہتے ہیں وہی لفظ ہے. جیسے ارغب فی التعلیم, مجھے تعلیم کی بڑی رغبت ہے. لیکن جب رغبہ کے بعد ان لگ جائے, یعنی اردو میں اس کو صلہ بولیں گے سواد سے, اور عربی میں آپ اس انگلش میں اس کو آپ سوری صلہ بولیں گے, اور اردو میں بولیں گے کہ اس کے بعد والا لفظ یا پریپوزیشن انگلش میں بول دیں, ان لگ جائے, جیسا کہ یہاں ہے ومئی یرغبو ان, یہاں تک لفظ ہے. دیکھا ہوگا اپنے ترجمے میں بھی میں نے ان ساتھ پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر معنی کیا ہوتا ہے, بے رغبتی, بالکل اپوزٹ معنی, وہی جو پٹ ان, پٹ آؤٹ, ٹیک ان, ٹیک آؤٹ وغیرہ, بے رغبتی اور اعراض کے معنوں میں. صحیح بخاری اور مسلم کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا فمن یرغب فمن رغب عن سنتی فلیس منی, وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. اگلا لفظ دیکھیے ملت ابراہیم, ابراہیم کا طریقہ. ملت سے یہاں مراد دین ہے, کیونکہ وہ دین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فرق ہے تھوڑا سا بس. ایک لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں دین, دین اسلام وٹ ایور, ایک لفظ پڑھتے ہیں ملت. قریب المعنی لفظ ہیں, لیکن کبھی کبھی اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. مثلا جب دین اور ملت کا لفظ آتا ہے نا, تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا حضرت کسی نبی کی طرف اس کی نسبت ہو جاتی ہے. مثلا جیسے دیکھیں ملت ابراہیم یہاں آیا نا, تو ابراہیم کی ملت. لیکن جب دین کا لفظ عموماً آتا ہے تو کیا ہے, فی دین اللہ, سورۃ نصر آیت 2 میں ہم پڑھتے ہیں کہ ورائتنا سیدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے, اسی طرح جب نبی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو لوگوں کے اندر جاری کرتے ہیں تو وہ نظام ملت کہلاتا ہے. اب یہ تھوڑی سی باریک باتیں, نہیں بھی سمجھیں گے تو کوئی نہیں. گویا کہ آپ کہہ لیں کہ ملت کی اصل دین ہوتی ہے, بس یہ آپ کہہ لیں. یہ دو چیزوں کے ایک دوسرے کے اندر ملا ہوا لفظ ہے. سورت حج آیت 78 میں بھی آتا ہے ملت ابیکم ابراہیم, یہاں بھی دیکھیں ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے, تو وہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. ہو سماکم المسلمین, اس نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا. دین ہمیشہ ایک ہی رہا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. سورۃ آل عمران آیت 19 میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے. ठीक है। तो यहां से पता चलता है कि यहूदियत और नसरानियत और हिंदू मत और बुद्ध मत वगैरह ये सब खुद साख्ता नाम है, पहले दौर में नहीं थे। अल्लाह ताला ने इंसानों को जिंदगी गुजारने का जो निजाम दिया वो शुरू दिन से एक ही है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और उसका नाम इस्लाम है। हाँ, इस दीन का इस दीन की जो आखिरी ईंट थी ना वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई। बात वाज़े, इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ? आदम अलैहिस्सलाम से। आखिरी उसकी ईंट क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसीलिए फिर सूरत मायदा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल यौम अकमलत लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पर तुम्हारा दीन पूरा कर दिया। जो आगाज हुआ था आदम के वक्त से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें एक बहुत बुनियादी मुकाम रखते थे, लेकिन आज वो तुम्हारा दीन तुम पर पूरा हो गया और तुम्हारे लिए इसको इस्लाम के तौर पे पसंद कर लिया। बहरहाल, इल्ला मन सफीहा नफ्सा, मगर वही शख्स सिवाय उसके जिसने खुद को अहमक बना लिया। सफीहा का जो लफ्ज होता है ना, इसका मानी होता है खुद को हल्का करना। जैसे हम कहते हैं ना कि बड़ी छोटी बात की है आपने, बड़ी गिरी हुई बात की है, रद्दी और नाकिस साबित करने को कहते हैं, खुद को बेवकूफ बना लेने के मानों में। तो गोया के पता चला अकल होगी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौर तरीकों से कभी भी खुद को अलग नहीं कर सकता। वो तरीका क्या? वो अगली आयत में आ रहा है कि इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम काल अस्लम तो रब्बिल आलमीन। यहां मुझे और आपको एक क्राइटेरियन और एक मेयार दिया जा रहा है कि देखो, तुम हकीकत में अगर अक्लमंद बनना चाहते हो, कामयाब जिंदगी बसर करना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जिंदगी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले तरीके लेके आने पड़ेंगे। आज हम मुसलमान जरा सा इस पे गौर करें ना, तो हमें अपना मुकाम खुद ही दिख जाएगा अल्लाह ताला की निगाहों में कि क्या आज हकीकत में हम अकलमंद हैं। जो जिंदगी के तरीके तौर तरीके मामलात हैं वो अकलमंदियों वाले हैं या बेवकूफी वाले हैं। बहरहाल, अभी इतनी बात करके आगे चलते, क्योंकि आज का पूरा सबक एक ही टॉपिक पे चलता है, तो इसलिए अगर हल्की हल्की वजाहत के साथ बातें चलती गई, आखिरत में आके आखिर में देखेंगे कि आप पूरी बात को इंशाल्लाह बिल्कुल समझने लग जाएंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। वलकद इस्तफई ना हो फिर दुनिया, हमने तो इनको दुनिया में भी मंतखब कर लिया था। इस पे रुकिए। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में चुना था। सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कैसे चुना था? अब जब ये लफ्ज आता है ना, तो हम कहते हैं अच्छा, चुनाव, विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होना, पोजीशन होल्डर, गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना। हमारे यहाँ अमूमन किसी के चुनने का यही मेयार है ना, मिस वर्ल्ड बना देना। हालांकि आप देखिए कि यहाँ लफ्ज शिद्दत के साथ है, वलकद। यहाँ अगर आप लाम और कद को अलग कर लेना, तो ये दो लफ्ज शिद्दत के लिए, एग्जेजुरेशन के लिए, तहकीक, जोर के लिए। हमने इसको चुना, हम क्यों आया? अल्लाह ने इज्जत के लिए इस्तेमाल किया लफ्ज हमने चुन लिया। ये जो लफ्ज है ना इस्तफा मुस्तफा, इसी से लफ्ज सफिया और सफाई भी है। ये जब सफाई करते हैं ना, वो भी आप चीजें चुन ही रहे होते हैं, बेसिकली गंदी और बेकार चीजों को अलग करते जाते हैं और इस तरफ ले आते हैं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कैसे चुना? कि उनकी बेपनाह कुर्बानियों को कबूल किया, ये था दुनिया में चुना जाना। अगर आप मादी तौर पे गौर फिक्र करके जरा सोचे ना, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कोई कामयाब शख्सियत नहीं दिखते अपने दौर की। जो मेयार आज हमारे पास है कामयाबी का, आप देखिए कि अच्छा घर, गाड़ी, बच्चे, हमारे यहाँ तो यही कामयाबी है ना। कोई इस तरह का बंदा हमारी नजर में आते तो हम कहते हैं वो बड़ा कामयाब है। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपको ये सब कुछ मिलता? सारी जिंदगी तो हिजरतें करते रहे अल्लाह के दीन के लिए, इधर से उधर, उधर से इधर। हाँ, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए चुनाव क्या था कि अल्लाह ने उनको अपने काम के लिए चुन लिया। आपको अगर अल्लाह अपने काम के लिए चुन ले, ना आपकी माल हो आपके पास, ना आपके पास माल हो, तरह तरह के रंग रौनक वाले कपड़े और खाने हो, लेकिन अल्लाह आसमानों से पुकारता है कि सही ना हो, अब कौन है हम में से जो चुना जाना चाहता है? कितने लोग हैं जो दुनिया में चुनाव के लिए क्या कुछ नहीं कर देते, लेकिन अल्लाह चुनाव कहता है कि मैं किसी को लोगों की हिदायत का जरिया बना दूं, पीछे आपने पढ़ा ना, इन्नी जाइलु कल नास इमामा, तुझे इमाम बना रहा हूँ, बेशक मैं तुझे लोगों के अंदर कामयाब करूंगा। तो मेरे और आपके सोचने का ये नुक्ता है, क्या हम इस रास्ते में चुना जाना चाहते हैं? क्या हमारे पास अकल नहीं है कि हम इस अकल को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को 2 + 2 = 4 की बजाय 2 और 2 = 22 कर ले? अकल बहुत है। क्या हमारे पास वक्त नहीं है कि हम 1-1 घंटे के 8-10 पाउंड कमा के तो अपना घर भरते जाए, है ना? क्या हमारा जिस्म आराम नहीं चाहता? क्या हमें नरम बिस्तर नहीं बुलाते? क्या हमें अपने आप को दीन के लिए इस्तेमाल करने के लिए कितनी तरह अपने आप को लाना पड़ता है कि कहीं हमारे चेहरे से ना पता चल जाए कि हम थके हुए हैं या हम नींद पूरी करके नहीं बैठे हुए? क्या ये सब कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन जिस बंदे को इस बात का एहसास हो गया कि मेरा चुनाव अल्लाह ने अपने दीन के लिए किया है, तो वो हकीकत में खुद पे रश करेगा। ये है वो नुक्ता जिसको समझने की कोशिश करने की जरूरत है। अल्लाह सुबहाना ताला यहाँ बात कर रहे हैं। पीछे आप देखिए रुकू 5 से बात शुरू, और असल में जो आज का सबक हम पढ़ रहे हैं ना, अगला सबक कल का दूसरा पारा, ये उसकी बुनियाद है। बिल्कुल आप कह लें कि अगर आज का सबक मुझे और आपको समझ आ गया तो कल के पारे से जो एक नया आपकी जिंदगी का दौर शुरू होने वाला है, अभी आपको तो पता भी नहीं है कि अगला पारा आपके लिए क्या क्या खजाने लेके आ रहा है, फिर आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ने आपको चुना है। कहाँ से उठा के इधर चुना लिया, बिस्तरों से निकाल के आपको इधर लाके बिठा दिया, कहाँ अल्लाह ताला आपको अपने कंफर्ट जोन से लाता है? ये अल्लाह की रहमत होती है। तो मुझे तो 2 बातें दुनिया में चुनाव की समझ आती हैं। एक, उनकी कुर्बानियों को कबूल करना। जरूरी नहीं है कि बंदा कुर्बानी करे और कबूल भी हो जाए। किसकी कबूल होती है? सूरत मायदा में आप पढ़ेंगे, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, तकवा वालों की कुर्बानियां कबूल होती हैं। दुनिया वालों की नजर में हम कितने ही ज्यादा कुर्बानियों का ढेर बने बैठे हैं, लोग हम पे कभी अफसोस कभी करे, कभी रश करे, कभी हमारे नाम के साथ बड़ी बड़ी बातें बना के बता दें, लेकिन हकीकत ये है कि जिस कुर्बानी को रब कबूल करेगा वही कामयाबी की है। इसलिए तो कहा रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम। तो असल बात कुर्बानियां करना नहीं है, कुर्बानियों की कबूलियत। कितनी कुर्बानियां हुई, और अभी देखिए इत्तफाक देखे कि आज ईद कुर्बान के बाद पहला सबक है हमारा। और मैं सोचती हूँ कि चले पहले के दौर में तो लोग कुर्बानियां करके खुश हो जाते थे कि कुर्बानियां कर ली, 6 कर ली 10 कर ली, किस घर से कितने बकरों की आवाजें आती हैं वो भी ठीक थी। आहिस्ता आहिस्ता जो चीज हमारे वेस्टर्न मुस्लिम्स में से निकलती जा रही है वो कुर्बानी का रिचुअल भी निकलता जा रहा है। जैसे चेक पे साइन करके किसी और जगह डोनेशन देते हैं, इसी तरह एक चेक साइन कर देते हैं कि हमारी कुर्बानी कहीं दे दी जाए। हमारे बच्चे, हमारी नस्लें उन बकरों का मिन मनाना और उनका रोना और उनका गोश्त और वो जज्बे, वो जिंदा ईमान पा ही नहीं रहे, इल्ला माशाल्लाह जो भी करते होंगे करते होंगे। तो खुदा के लिए अपनी नस्लों को इन चीजों से महरूम ना करें। आपको दूर जाके करना पड़े करे, हम अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में भी थे तो वहां भी शहर से बाहर जगह बनी होती है, साथ जाते थे जो भी घर वाले, और जाके देखना, वो बकरों को देखना भी एक ईमान देता है। इस तरह से मुझे होता है, मैंने जब अभी फील किया तो मैंने कहा कि जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रास्ते में भाग भाग के जाते थे ना, तो ये बकरे भी जा रहे हैं। भाई वो बच्चे बता रहे हैं कि 4-5 बकरे थे तो एक बकरा था तो वो काबू में नहीं आ रहा था, ऐसे तोड़ तोड़ रहा था, तो वो किसाई ने कहा कि ये कहता है मुझे जल्दी कुर्बान करो अल्लाह के रास्ते में। अब वो बकरा क्या सोचता था, लेकिन ये चीजें ईमान देती है ना, तो ये कुर्बानियां कबूल हो जाएं, ये दुआ करें। कोई हमारी कुर्बानियों के रास्ते में हराम और हमारे अकायद के अंदर और हमारे दिल के अंदर ऐसे चीजें ना हो कि हमारी ये कुर्बानी हमारे मुंह पे मार दी जाए। आपको होता है पहले दौर में क्या होता था कि जब लोग अल्लाह के रास्ते में कोई चीज कुर्बान करते थे तो उसको खुले मैदान में छोड़ आते थे, फिर आसमान से एक आग आती थी और जिसकी कुर्बानी को खा जाती थी तो सबको पता चल जाता था, मुबारक हो तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो गई, और जिसकी कमाई, जिसके नियत इरादे में और तकवा में कमी थी, उसकी कुर्बानी का जानवर वहीं गलता सड़ता रहता, तो उसकी रुसवाई हो जाती थी दुनिया में कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। आज अल्लाह ने शायद हमारे पर्दे ढक लिए, वरना फिर असल देखेंगे कि किस किस की कबूल होती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बंदे के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होता है कि वो उसकी नेकियों को कबूल भी कर ले। हर लम्हे ये फिक्र किया करे, अब आपके अंदर ये सोच दिन ब दिन बढ़नी चाहिए कि नमाज तो पढ़ी है, ये बताओ कबूल कितनी हुई है। ये तो किया, रोजा तो रखा, ये कबूल कितना हुआ, इसमें से मुझे कितना मिला, क्या मिला। तो जब आपकी नीयत अच्छी, आपका दिल आपको बताएगा कि इंशाल्लाह ताला आपका कबूल हो रहा है। और दूसरी कुर्बानी कि अल्लाह ने अपने काम का बना लिया, इस्तफाई ना हो फिर दुनिया, साफ कर लिया। लफ्ज पे भी गौर करें ना, इस्तफाई ना हो, चुन लिया सारी अलाइशें, गंदगियां इधर उधर की निकाल के उतार के अल्लाह ने उसको पाक किया। क्या दिन ब दिन अल्लाह के रस्तों में आने से आपकी दुनिया की अलाइशें दूर नहीं होती? कितने बोझ और कितने परेशान हैं। मुझे अच्छी तरह मैंने ऐसे लोगों को ऑब्जर्व किया हुआ है कि सिर्फ एक बाल अगर उनकी पलकों में, भवों में हो ना, तो वो कहीं जाते नहीं, नहीं मेरी पल मेरी बा, मेरे बाल भरे में मैं कहीं नहीं जा सकती, अपनी दाफ्तों में जाना है। कहीं जाने से पहले हथियार लेके बैठ जाते हैं कि जी अब जरा एक एक चीज चुन चुन के उतार ले, क्योंकि हमने वहां जाना है। आपको परवाह ही नहीं रहेगी, किसी को क्या लगे मेरे हाल से, किसी को मेरे हुलिये से क्या लगे। तो इस तरह से आप अपने आप को चुना हुआ पाएंगे। आप देखिएगा कि रास्ते में आपके को रोड़ा आएगा ना अपने घर में ही चीजों में, तो आप कहेंगे नहीं ये नहीं मुझे, पकड़ो इसको हटा दो। आप अपने जिन में लाए, किसी को भागना है और रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर जगह चीजें आ रही हैं, तो क्या करेगा, चीजों को हटाता जाएगा ना, क्योंकि वो चीजें उसके पाँव का नाखून तोड़ेंगी या उसकी स्पीड रुकेगी। गैर महसूस तरीके से आप देखेंगे और आना चाहिए। अगर आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब कि आप बिल्कुल अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं, कि आपकी दुनिया की चीजें कम होती जाएंगी। दुनिया की चीजें इस तरह कम होंगी आपको एहसास नहीं होगी। एक तरफ आपके पास चॉइस है कि आप अपनी दुनिया भर लें, और कपड़े ले लें, और जूते ले लें, और ले लें जो पहले ही बहुत होता है, और दूसरी तरफ छोड़ो क्या करना है, इधर से उधर की चीजें, उधर से फिर इधर की, पकड़ो कोई ऐसी चीज पकड़ लो कि जिससे आपका सदका जारिया बन जाए, जो आपके नाम अमाल को भारी कर दे। और इस तरह से एक बंदा आगे से आगे चलता जाता है, चलता जाता है। तो कह दीजिए कि इब्राहिम का तरीका इखलास का तरीका था, इब्राहिम का तरीका तौहीद का तरीका था, शिर्क से पाक था। जब कोई हुक्म आए उसको मानने का तरीका था। अब उसकी अल्लाह ताला कुछ आपको अमली चीजें दिखाएंगे कि कैसे। वलकद इस्तफई ना हो फिर दुनिया व इन्नहु फिल आखिरति लमिन सालिहीन, और आखिरत में वो नेक लोगों में होगा, नेक लोगों के जुमरे में होगा। लामिन, इस पे अरबी के लफ्जों पे गौर करो तो इतनी ताकीदें हैं, ताकीद बोलते हैं इस्लाम को जो मिन से पहले लगा हुआ है। जरूर ऐसे ही होगा, सालेहीन सालेह का जमा, कि इब्राहिम जरूर नेक लोगों में होंगे। आखिरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम नेक लोगों में कैसे चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया में उनका तरीका नेकी वाला था। क्या क्या आखिरत में इब्राहिम को मिलने वाला है, वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अहादीस से हमें जो बातें समझ आती हैं या मिलती हैं उसमें से चंद बातें आपसे शेयर कर देती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कि सबसे पहले कहते हैं कि क्यामत के दिन लोग बरहना जब उठेंगे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। क्यों? क्या आपने फरमाया कि जब आग में इनको फेंका गया था तो उस वक्त उनके जिस्म से कपड़े उतार लिए गए थे। तो अल्लाह के रास्ते में आपका जो कटता है, जो उतरता है आपसे, अल्लाह आपको दुनिया में भी दे देता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला लिबास देंगे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेराज के सफर में भी अल्लाह के नबी को दिखाया गया कि बिल्कुल ऊपर सातवें आसमान पे थे। और नबियों का आसमानों पे मुख्तलिफ पे होना उनके दर्जों की बात है। पीछे से शुरू करें तो सातवां आसमान अर्शे इलाही के बिल्कुल करीब है। तो अर्शे इलाही के करीब ये है अल्लाह ताला की इस्तफई ना हो फिर दुनिया, और आखरत में वो सालेहीन में से होंगे, अच्छे तरीकों में से होंगे। फिर इसी तरह आखरत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जो भी होगा, लेकिन एक रिवायत में मिलती है कि वो बच्चे जो एबॉर्ट हो जाते हैं, कच्चे छड़े हुए बच्चे बोलते हैं ना, जो खुद बहुत माँ के पेट से झड़ जाते हैं, हदीस में आता है कि वो जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की किफालत में दे दिए जाते हैं। हमने तो पता नहीं उनका क्या मत मारनी थी दुनिया में, बिगाड़ बिगुड़ के उनके बुरे हालात करने थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको आखिरत में देता है। तो याद रखिए, सिर्फ दुनिया ही की कामयाबियां कामयाबियां नहीं होती, कि आपको यहाँ क्या मिला, आपको इससे इधर क्या मिलेगा, इससे क्या आपका फायदा हो रहा है, इससे आपका क्या होगा, इन चीजों से हट के ये देखिए कि आगे चले। अब इस पूरी आयत में आप देखिए तो पता क्या चलता है कि जो बंदा अपनी जिंदगी में कोई नेकी करता है, अल्लाह उसकी कदर बड़ी करता है। और यहां से ये भी पता चल जाता है कि जहालत और अकलमंदी बराबर नहीं है। इस्लाम तो सलामती का रास्ता है, सबमिशन का रास्ता है। जो लोग अल्लाह की बात इब्राहिम की तरह मानते हैं और जो नहीं मानते, वो कभी बराबर नहीं हो सकते। और यहाँ से ये बात भी पता चलती है कि जो दुनिया में इज्जत चाहता है और आखिरत में सालेहीन के गिरोह में चाहता है, तो उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होना पड़ेगा। क्या था इब्राहिम का तरीका? पहले तो हल्की सी बात की, अब उसकी तफसीलात। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, आयत 131। जब इसके रब ने इसको कहा कि मेरे सामने झुक जाओ, ठीक है, इस क़ाल लहू, यहाँ बड़ी खूबसूरत लफ्जी हुसन है, अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ अपना उलझल लहू, हु आया ना, और हु से मुराद इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये तो नहीं आया ना कि इस क़ाल अली इब्राहिम रब्बुहु अस्लिम, इब्राहिम का लफ्ज नहीं आया ना, उसकी जगह पे हु की जमीर आ गई, ठीक है, कि जब उसको कहा उसके रब ने कि असलिम, मुसलमान हो जा, फरमा बरदार हो जा, बात मान ले, काला तो कह, कहा उन्होंने, किसने कहा? इब्राहिम ने, असलम तू, मैं मुसलमान हो गया, ली रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन के लिए। यहाँ ये क्यों नहीं कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? अब मैंने जो बात उठाई है उस पर गौर कीजिएगा, लहू जब आया था ना, जमीर थी ना, तो आगे भी जमीर ही आनी चाहिए थी, यानी इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तू, लहू, दैट्स इट, बात खत्म। उसको कहा मुसलमान हो जाओ, उसने कहा मैं हो गया उसके लिए। अल्लाह सुबहान तआला के लिए लफ्ज हु नहीं आया, बल्कि रब्बिल आलमीन आया। इब्राहिम ने अपना मुकाम बयान कर दिया कि मेरा रब मुझे जिस तरह से भी चाहेगा, मैं उसके आगे झुकने को तैयार हूं, मेरा रब रब्बुल आलमीन है। इसकी वजह क्या है? तीन वजूहात नोट करें। सबसे पहली तो अदब, के अदब के लिए अल्लाह ताला के लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज अदब के साथ इस्तेमाल किया, अल्लाह ताला की शान का हक बयान किया। फिर दूसरा, इससे एक मफहूम निकलता है कि अगर मैंने रब्बुल आलमीन की इताअत इख्तियार की है, तो मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, मुझे ऐसे ही करना चाहिए था क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, बात वाज़ह। यानी अपने छोटे होने का एहसास दिलाया जा रहा है कि मैंने अगर रब की बात मान ली है, तो कोई मैंने एहसान किए, मैं तो हूं इतना छोटा, मेरा रब इतना बड़ा, इसी को मान लूंगा, इसके सिवा कोई बात ही नहीं है। और तीसरी बात क्या पता चलती है कि जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम बताते हैं कि वो रब्बुल आलमीन सारे जहान वालों को पालने वाला है, तो मुझ पे फर्ज है कि मैं उसकी बात मानूं। यानी पहली बात क्या है? अदब और अल्लाह की सना और हम बयान करने का मुकाम है। दूसरा बता रहे हैं कि मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैं रब्बुल आलमीन के आगे झुका हूं, किसी छोटी हस्ती के आगे नहीं झुका। और तीसरा ये कि इसके आगे झुकना मेरे ऊपर फर्ज है। अब आप बताइए कि लफ्ज के अंदर से मानी निकलते हैं। ये है कुरान, ये समंदर है जिसको आप पीने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ खोल के बयान कर दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरी बात को सुनकर चूं चा हाँ हूं मैं नहीं पढ़ गए। हम होते तो क्या करते? अच्छा सोचते हैं, लेट सी वट विल हैपन, इफ, बट यस आई वॉन्ट टू डू इट, बट हमारा बट इतना बड़ा हो जाता है कि हम काम ही नहीं कर पाते, और इफ के नाम पे सवालात का एक इतना लंबा सिलसिला शुरू हो जाता है कि हम अपने आप। बंदे का मुकाम भी यही है कि इस काल लहू रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तो ले रब्बिल आलमीन। आप दुनिया में किसके लिए ये बात अपने लिए क्या पसंद करते हैं? आप अपने बच्चे से कि बेटा पानी दो, क्या चाहते हैं? फौरन जाए, अच्छे सलीके से ग्लास निकाले, पानी डाले, उसमें ट्रे लगाए, ला के बड़े अदब से सलीके से ला के आपको दे, और साथ मुअद्दब होके खड़ा हो जाए कि अम्मी साथ कुछ और ला दो, यही है ना। और अगर बच्चा पूछे क्यों, वाय, अगर ना लाऊं तो क्या गुना? फर्ज है, सुन्नत है, मकरूह तो नहीं, हराम तो नहीं, थप्पड़ मारेंगे आप उसके मुंह पे, चलो भाग जाओ। आप जरा अपने ऊपर और मेरे ऊपर लेके सोचिए, जब हमें अल्लाह का कोई हुक्म आता है तो हमारा रवैया कैसा होता है? सवालात वाला, अच्छा ये, अच्छा वो, ये वो, या चल पड़े? अगर इब्राहिम का तरीका अपनाना है तो ये है, और इब्राहिम को कोई बना बनाया माहौल नहीं बना था। ये आपके जहनों में उठने वाले सवाल का जवाब अभी दे दो। हम कहते हैं हाँ, दिल तो बड़ा चाहता है जो सुने फौरन अमल करें, लेकिन वो मेरे शौहर भी तो भी साथ नहीं देते ना। और अभी मेरी अम्मा जी और सास जी का तो मिजाज भी ठीक नहीं, और वो मेरे तो अपने बच्चे ही इसके खिलाफ है, और मेरे तो दिस एंड दैट। तो याद रखिए कि इब्राहिम किसी आइडियल माहौल में नहीं थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे अंधेरों से निकलकर रोशनी में आए। सूरह अलानाम में इनका सफर आप पढ़ेंगे। इनके चारों तरफ अंधेरे थे। इनका अपना बाप बुत बेचता था, बादशाह का प्रोहत था, दरबारी था बादशाह के पास, उसकी बहुत बड़ी आप कह ले वजीर था उस दौर का। इतने अंधेरों से लड़े, और जब लड़े तो अल्लाह ताला ने उस बात का सबूत क्या दिया कि वलकद इस्तफईना हु फिद दुनिया। पता क्या चला कि अल्लाह की राह में की हुई कुर्बानियां कभी रायगा नहीं होती। इस तिजारत में कोई घाटा ही नहीं है, मत सोचा करें, सोच सोच के ना करा करें नेकियों के फाकाम। इरादा हुआ चल पड़े, सुबह उठ के अपना हाल पूछेंगे ना तो आधे लोग बीमार होंगे। गर्म बिस्तर से निकल के बाहर निकलना ये बीमारी कर देता है बंदे को, अगर दुनिया का मामला हो। लेकिन दीन का मामला हो तो हजरत हुजैफा की तरह कि सर्दी वाली रात पे खंदक के मैदान में गए मुहासरा देखने, और कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे चारों तरफ किसी ने कंबल दिया हुआ है। मत हाल पूछे अपना, नेकियों में चल पड़े। वो कहते हैं ना कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। इस रास्ते में कभी भी बंदे का नुकसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस तरह चुना वाला कद इस्तफाई ना हो, उसमें ये पॉइंट वहीं ऐड कर दे कि अल्लाह ने तो उनके कदमों के निशान तक चुन लिए। मकाम इब्राहिम, अल्लाह ऐसे चुनता है। अपने दोस्त के कदमों के निशान अल्लाह ने महफूज कर दिए कि जो कदम मेरे रास्ते में चलेंगे मैं उनको मिटने नहीं दूंगा। याद रखिए कि हमें भी ये सारे मुकाम मिलने की के मौके मिलते हैं, लेकिन हम रुक चुके होते हैं। लेकिन बहुत तेज रोड हो, आप सोचिए हाईवे होती है ना, तेज ट्रैफिक होती है, कभी आपके पीछे ना बहुत तेजी से आए ना, तो आप क्या करते हैं, फौरन अपनी गाड़ी बजा के कहते तुम जाओ। जो तेज आते हैं ना उनके रास्ते से बैरियर्स उठा लिए जाते हैं। क्यों? कि इन्होंने रुकना कोई नहीं, रुकना कोई नहीं, तो अपनी जान बचाओ। मैं और आप इन नेकियों के सफर में अगर तेजी करेंगे ना, तो हमारी मुखालफतें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। उन्होंने कहा इसने नहीं रुकना, पीछे हो जाओ। मैं काफिर थोड़ी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैं फलां थोड़ी हूँ, मैं भी ये करता हूँ करता हूँ। और अगर आप पूछ के प्लीज आप कहें, तो अगर आप अलाउ करें बिकॉज मैं सीख रही हूँ अच्छा अखलाक कुलनासी खुसना, तो कोई बंद आपको रास्ता नहीं देगा। ट्रैफिक में जाते हुए इस बात को आप 20 बार देख सकते हैं। जो गाड़ी लोगों से पूछे ना कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊँ, कोई जाने देता? जो बीप दे रहे होते हैं और जो सिग्नल देते हैं इधर से उधर उधर से उधर, वो क्यों? ताकि आप रास्ता लें। तो याद रखिए जिंदगी के इस सफर में भी हर वो चीज आपके रास्ते में जो आ रही है ना, रुकावट बन रही है, उसको आपको खुद हटाना पड़ेगा। वरना लोगों का तो मामला क्या है, वद्दुलो तुदखिनु फयुदखिनुन, वो तो चाहते हैं कि आप जरा ढीले पड़े तो हम इनको और ढीला करें। आज आप जाके जरा मशवरा करके देख लें घर वालों से कि एक पारा पूरा हो गया, देख ले मुझे अब आगे चलना चाहिए नहीं, तो वो कहेंगे सोच लो। अगर आपने ढीला ढाला अपना दिखाया होगा तो कभी भी वो आपको इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। वो कहेंगे नहीं, तुम्हारे साथ ये मामला है, खराबी का और है, तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला यहाँ यही बात बता के कहते हैं कि इब्राहिम को हमने क्यों चुना, इस काल लहु रब्बुहु अस्लिम, काल अस्लम तुले रब्बिल आलमीन। और ये सलामतियों वाली बातों की अमली मिसालें कौन सी थी, आप सबको फिंगर टिप्स पे याद है, बचपन से हम इतनी दफा सुन रहे हैं कि बचपन में इंसान को बाप प्यारे होते हैं, माँ बाप प्यारे होते हैं, तो बचपन में वो चल पड़े किधर, जब बाप के साथ लड़ पड़े, बिरादरी खानदान था तो उस वक्त निकले तो किधर चल पड़े, हिजरत करके चल पड़े। जवानी में बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, वो सारी कहानियां जो पीछे कई दफा से आपको सुनाते जा रहे हैं कि इस असलम तुले रब्बिल आलमीन के मौके सबूत किस किस मौके पे दिया। बीबी हाजिर और इस्माइल को अल्लाह के हुक्म से सहरा में छोड़ दिया। हम छोड़ते? हम तो अपने बच्चे का स्कूल नहीं बदलवाते, नहीं इनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है चाहे ये इस्लामी स्कूल है, और इनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, और इनके मैनर्स अच्छे नहीं है, हम तो स्टैंडर्ड कॉन्शियस इतने हो जाते हैं। اسماعیل کی گردن پہ چھری پھیرنے کا خواب تھا، حکم نہیں تھا کہ کرو. آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ سواد میں اور صافات میں کہ یہ نہیں کہا تھا کہ ابراہیم جاؤ اسماعیل کی چھری پہ گردن پہ چھری پھیر دو، یہ نہیں دکھا تھا رہی تھی. اور نبی کا اشارہ، نبی کو جو خواب ملتے ہیں وہ بھی اشارہ تھا، وہ بھی حقیقت ہوتی. چل پڑے، خواب کو حقیقت بنانے میں چل پڑے. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ذرا سا بچہ آگے بڑھتا ہے، اسی بچے کو ساتھ لے کے بیت اللہ کی تعمیر میں بیٹے کو لگا دیا. وہ جگہ جہاں کوئی گھر نہیں، صحرا ڈیزرٹ، وہاں اللہ کا گھر بنا دیا. اتنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب اوپر سے نیچے دیکھیں جہاز میں سے کہیں سمندر، اور جب آپ کی ظاہر ہے کہ جب عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو میلوں کی میل ڈیزرٹ ہے. تو میں ونڈو سے دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ ایسی ہی جگہوں میں ایک جگہ تیرا گھر بنایا تھا ابراہیم نے، اور آج وہ دیکھ کیسے بھرا ہوا ہے. اس کے پل بناتے ہیں، کبھی کچھ ایکسٹینشن، اتنے لوگ ہیں، چاروں طرف کچھ نہیں ہے. آپ اگر جہاز سے اوپر دیکھیں بیٹھے ہوئے تو حرم اور مکہ کے ارد گرد آپ کو رونق ہے، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، بیکار سوکھا. اللہ بتاتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرے گا کوئی تو چاروں طرف اگر ماحول واقعی بنجر بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے خیر دلوا دے گا. اصل بات یہ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. جس وقتوں میں لوگ اپنے گھر بناتے ہیں، ابراہیم نے اللہ کا گھر بنا دیا کہ چلو آپ بچوں کے لیے گھر تو بنا دوں کم از کم، چاہے فرما برداری سے بنے یا نافرمانی سے. یہ نہیں کہا اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب. لسٹ ہے یہ سبق پورے کا پورا. رکوع آپ کو اور مجھے اپنے لیے کوشچنز کر کے چھوڑنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. اور یہ طریقہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، وہ وصا بھا ابراہیم بنی ہی، یہی بات اسی کی نصیحت تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی کی تھی. یہ ہے خوبصورت نقطہ. ہم بہت زیادہ اولادوں کے بگڑنے کا اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا حالات کا شکوہ کرتے ہیں، لیکن آپ فیل کیجئے گا کہ نبیوں نے اپنی زندگی میں وہ بنیادیں اٹھانی شروع کر دی تھی جن پہ بعد میں ان کی اولادوں نے دین کھڑا کیا تھا. اور وصیت کہتے ہی قیمتی چیز کو ہے، بڑی اہم. مرنے کے وقت جو بات نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بندہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، وہی بات کرتا ہے جس کی اس کے دل کو چوٹ پڑی ہو. تو نبیوں نے ڈیتھ بیڈ پہ کیا کہا، صرف ابراہیم نے نہیں، ابراہیم بنی ہی بلکہ و یعقوب، وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو. یہ مطلب ہے کیا کہا، آپ ذرا اس وصیت پہ غور کیجئے. اور خود کو ڈیتھ بیڈ پہ رکھتے ہیں، مرنا تو ہے نا. خوش قسمت ہے کہ جن کو موت سے پہلے اثار شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے ہیں، کوئی چلو اچھا اپنا حساب کتاب سیدھے کر لے. اسی لیے کہا کہ اچانک موت مومن کے لیے تو رحمت ہے، لیکن گناہگار اور کافر فاجر کے لیے ایک پکڑ ہے. نہ توبہ کر سکا، نہ لوگوں کے معاملے حساب کتاب سیدھے کر سکا. اسی لیے کہا گیا کہ ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہو. ڈیتھ بیڈ پہ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، میں ہوتی تو کیا کہتی، ساتھ ساتھ محاسبہ. یا بنی جا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفا لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو. ہم یہاں کیا کہتے ہیں، اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، اس کا ادھر رشتہ کر دوں، اس کا خالہ کے گھر کر دینا، اس کا مامو کے کر دینا، اور وہ فلاں جائیداد ہے وہ اس کے نام پہ لگا دینا، وہ ادھر کر دینا. بڈھے بڈھے مرتے ہیں نا، تو مرنے کے قریب ان کے دل و دماغ پہ اپنی جائیدادیں اور اپنی زمینیں ہوتی ہیں. یقین کریں، یہ گھر اس کے نام لگانا، اچھا یہ کرنا، یہ میرے کڑے اس کو دے دینا، میری چوڑیاں ان کو دینا، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں قیمتی لگتی ہیں نا. نبیوں کو دین قیمتی لگتا ہے، اس لیے ان کو غم کیا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں تو اللہ کے دین کی حت المقدور حفاظت کی، سنبھال کے رکھا، اس کے اندر پلیوشن نہیں ہونے دی، اس کے اندر گندگی نہیں ڈالنے دی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد یہ دین بگڑ جائے، چوری ہو جائے. اس لیے کہا کہ دیکھو بچوں، اس دین کی حفاظت کرنا نمبر ایک، اور نمبر دو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس نہ مرنا تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پہلے تو دیکھیے کہ اس سٹائل سے یہ نہیں لگ رہا کہ مرنا ان کے اپنے اختیار میں، رائٹ؟ سٹائل یہی نا، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہوتے ہوئے. اور اگر لفظ دیکھیں نا تموتن، تو نون ثقیلہ بولتے ہیں اس کو، शिद्दत है, तशदीद भी है, पर शद भी है, जोर बयान, ताकीद, हरगिज हरगिज तुमको मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो। कैसे ये सब कैसे हो कि तुम वो काम करो जिस पे तुम मरना चाहते हो। ये मतलब है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मौत इस्लाम पे आए तो हर वक्त मुस्लिम बने रहो, ताकि जब भी जहां कभी मौत आए उस वक्त तुम अपने आप को मुसलमान पाओ। ऐसा ना हो कि अपने आप को गलत तरफ ले जाओ और पीछे ले जाओ। खैर उसके बाद क्या हुआ, कहा ठीक है, अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, ये दीन अल्लाह का इंतखाब है, इसके बाद अब किसी और चीज को मुंतखब ना करना, इसके अलावा किसी और की तरफ रुख ना करना, ये अल्लाह का फजल है, इसकी बख्शिश है, इससे कम चीजों पे ना रहना, इस दीन का वही शौक रखना जो हमारे सामने था, नमाजें भी कायम करते रहना, ये अमानत है, इसको कबूल करते रहना। और साथ ही साथ कह दिया कि वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मुसलमान ही मरना, मौत तुम्हें आए तो इस्लाम के हाल पे आए। और साथ ही अब देखिए आगे सवाल है, यहाँ थोड़ी सी पहले बात बता दूं फिर समझ आ जाएगी आपको, कि नबियों ने तो मरते वक्त अपने बच्चों को किस बात की दावत दी, मुस्लिमून, बस इस लफ्ज़ मुस्लिमून को हाईलाइट करके एक साइड पर कर दे। और याद रखना चाहें तो इस आयत से इतनी बात समझ लें कि नबियों ने अपनी औलाद को जिंदगी में जिस चीज की दावत दी थी ना, मरते वक्त भी उसी की दी थी, और वो क्या है कि तुम मुसलमान मरना। सूरत यूसुफ अगर आप खोले 101 आयत में, तो हजरत यूसुफ ने अपने लिए भी यही दुआ की थी कि फातिर अस्समावाति वल अर्दी, ए आसमान और जमीन को पैदा करने वाले, दुनिया और आखिरत में तू ही मेरा कारसाज है, लिहाजा तवफ्फनी मुस्लिमन, मुझे मौत ना देना मगर इस्लाम की सूरत में, वल्हिकनी बिस्सालिहीन, और मुझे नेक लोगों के साथ रखना, मेरा दीन एक ही हो, मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे पड़ के फिरका बंदी और इस तरह की चीजों में ना चले जाऊं। लेकिन बाद में यहूद ने क्या किया, एक इल्जाम लगा दिया। अब ये आयत नंबर 132 का थोड़ा सा सबबे नजूल नोट कर लीजिए कि यहूद ये दावा करते थे के बल्कि इल्जाम लगाते थे अंबिया कराम पर, जैसे के दूसरे लोग लगाते हैं, दूसरे इल्जाम उन्होंने लगाए, वो क्या थी, कहते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मरते वक्त अपनी औलाद को ये नसीहत की थी कि तुम यहूदी हो के मरना। अब यहां थोड़ा सा दिलचस्प नुकता आप देखेंगे, इसलिए हम यहूदी हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अम कुंतुम शुहदा, अब आयत पे नजरें कीजिएगा, क्या तुम हाजिर थे, किसको कहा जा रहा है, क्या तुम से मुराद यहूदे मदीना। अच्छा तुम ये कहते हो कि वो कह के गए हैं कि मरना, इस हदर याकूब अल मौत, जब याकूब अलैहिस्सलाम के पास मौत आई, यानी उनके डेथ पे, यानी ये जो इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि उन्होंने यहूदी बनने की और यहूदियत पे मरने की बात की थी, तो क्या ये तुमने अपनी आंखों से देखा था, तुम उस वक्त हाजिर थे। अब यहां देखिएगा कौम है, खामोशी है, यानी कि ऐसा हुआ ही नहीं, नहीं है, आम का जो लफ्ज है ना या के मानों में आता है, यानी या जो बात तुम कह रहे हो वो सच है या फिर दूसरी बात सच है। जब उनके ऊपर मौत के असबाब शुरू हो गए हुए थे तो फिर मान जाओ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। अब यहां अगला हिस्सा जो है ना, ये असल वसीयत के अल्फाज है, इस कौल अली बनी ही, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा, किसने कहा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मा ताबुदूना मिन बादी, किस की तुम इबादत करोगे मेरे बाद, मा ताबुदून, देखिए एक होता है मन आकिल के लिए आता है और माँ गैर आकिल के लिए आता है। अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है ना, वो दो तरह के हैं, कुछ लोग हजरत ईसा की इबादत करते हैं, तो हजरत ईसा कौन है, मन आकिल है ना, और कुछ लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, दरख्तों की, तो वो क्या है, माँ। गोया के माँ में और भी छोटी बात है कि ये बताओ किस किस की मेरे बाद इबादत करोगे, जिंदों की मुर्दों की, किसको पूजोगे। कालू, वो बोले, कौन बोले, आप भी बोलिए, हजरत याकूब के बेटे, कितने थे, 12। क्या बोले, नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाह का, तेरे इलाह की, व इलाह आबाई का, और तेरे बाप दादा की इलाहों इलाह की। ये जो लफ्ज आबा है ना, अब से जमा, तो उर्दू में हम कहते हैं बाप दादा, अबाउजदाद, लेकिन यहाँ से मुराद है बहुत सारे बाप। तो जैसे बाप होता है ना, तो दादा भी बाप ही होता है, पर दादा भी बाप है, बाप 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 का बाप सब बाप है। तो बाप में मुराद क्या है कि आपके इंसेस्टर्स, आपके फोर फादर्स, इन सब की हम इबादत किसकी करेंगे? इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक, इब्राहिम इस्माइल और इसहाक के रब की, यानी ये सारे इनके बाप दादा थे ना, उनका नाम ले दिया। और इन सब के कोई इला फर्क नहीं थे, बल्कि इलाहम वाहिदा, एक ही इला था उनका। वह नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उनके लिए, उसके लिए मुसलमान रहेंगे। यहाँ रुकिए जरा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए लगाई, अल्लाह की तौहीद, हकानियत, बच्चों की जितनी अच्छी तरबियत कर सकते थे कर दी। अब डेथ बेड है, मौत की सख्तियां, और बाप बच्चों से पूछता है कि बच्चों बताओ मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, और बच्चे कहते हैं इलाहम वाहिदा। कितना सुकून मिला याकूब को, आपकी और मेरी जुबान में कितनी इत्मीनान की और चैन की मौत आई होगी, जिसको कहते हैं ना कि अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। सवाल पैदा होता है, क्या मुझे और आपको भी इस बात का यकीन है? हमारे बच्चे हमारे बाद मुसलमान ही रहेंगे, इस्लाम पे ही होंगे। अपनी जिंदगी में कोशिशें की हुई हैं, और उनके अंदर जबरदस्ती वाला दीन नहीं, दिल को तोड़ने वाला दीन डाला हुआ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें। लेकिन अगर जबरदस्ती की नमाजें, बोझ पड़ती हुई नमाजें और बातें, क्या करें किस तरह से, और वैसे वाली बातें, तो आप बताइए कि डर है कि नहीं कि आज तो हम उठा के कहते हैं कि ये काम कर लो तो वो कर लेते हैं, और अगर हम उस काम से रोक लेते हैं, हम नहीं कहते तो उनकी आंख ही नहीं खुलती। बात वाजे, हर दिन अपने बच्चे को इस तरह से डील करें कि मैं कल हूं कि नहीं हूं। याद रखिए, हर नमाज पे जब अपने बच्चों को रोकते हैं ना, उठाते हैं, तो सोचा करें अगर अगली नमाज पे मैं ना हुई तो क्या ये खुद उठ जाएंगे? और मुझे एक बाप की बात नहीं भूलती, अपने बच्चों को जब उठाते थे ना फजर के लिए, और एक दो आवाजें लगाने के बाद जब बच्चे नहीं उठते ना, होते ही है ना, जवानी की नींद भी बड़ी भारी होती है, तो एक दिन कहने लगे कि बच्चों मुझे ऐसे लगता है कि हार्ट अटैक हो गया और मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम तो नहीं उठोगे। भाई नमाज के लिए नहीं उठ रहे तो मैं भी तो चीखूंगा, तुम्हें क्या पता बाप बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। हकीकत है कि ये बात दिल को पकड़ने वाली है। अपने जवान बच्चों के साथ दोस्तियां करें, उनके दिलों को सजाएं, छोड़े अब उनकी चीजों को जाती, जो भी मामले हैं ना, अल्लाह उनको खिलाएगा, पिलाएगा, पहनाएगा। गर्मी सर्दी, हम इससे कितना ज्यादा फिक्र करते हैं। भूखा जाए बच्चा सारा दिन, माँ को चैन नहीं पड़ता। जैकेट ना पहन जाए, माँ को चैन नहीं आता। लेकिन अगर सुबह की नमाज, शाम की नमाज, दुआएं, अरस्कार नहीं है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि हमारे बाद क्या होगा? What am I leaving behind? मैं अपने पीछे क्या छोड़ रही हूँ? आप देखिए कि आप में जो यंग बच्चियां इस वक्त, जिनके भी शादियां नहीं हुई और जिनके भी बच्चे नहीं है, आप सबसे ज्यादा ब्लेस्ड है। अभी तो आपके पास वो रास्ते भी चुनने का चॉइस मौजूद है कि आप कैसा लाइफ पार्टनर पसंद करें अपने लिए। मैं कहती हूँ एक शौहर में कोई खूबी ना हो, एक टैडी पैसा, जिसको कहते हैं ना अपनी जुबान में टैडी पैसा, कमा के ना लाए घर में, बीवी को कोई फूल तक ना दे, लेकिन अगर वो उसको नमाज के लिए सुबह फजर पे उठा देता है ना, तो वो ब्लेस्ड है, वो आपके लिए एक खुशकिस्मती की अलामत है। समझता है कि तुम्हें तुम्हारे जईफ किसी का शौहर कमजोर ही हो, बीमार है, हैंडीकैप्ड होते हैं लोगों के, नहीं जॉब करते, जॉबलेस हैं, पेशेंट्स हैं, कहीं भी हैं, घरों में कई तरह की कहानियां, मिसालें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर वो आपके, उनकी वजह से घर का माहौल दीन पे है, और वो आपको फजर पे सबको उठा देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी की दुआ करें, ये ना कहें कि इनका कोई फायदा नहीं है। और अगर आपके बाप नहीं, मतलब के बाप सुन राजे के शौहर आपके नहीं, दादा, घर में एक दादा बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, हाथ नहीं तोड़ता, दादी या दादा, कोई भी, नाना नानी, बुजुर्ग कह लें घर का कोई, अगर फजर पे उठ के उसके उठने की वजह से घर उठ जाता है ना, तो आप उनकी जितनी खिदमत कर लें कर लें, क्योंकि ये चीजें फिर हमेशा नहीं रहती। पहले दौर से बचपन से देखता रहे हमारे अपने लाशौर में। यकीन करें मुझे अच्छी तरह याद है कि छुट्टियां होती थी तो शौक होता है नानी के घर जाने का, लेकिन इस वजह से खौफ आता था कि घर में सुबह सुबह नाना वो नानी मन उठा देना, उन्होंने पर्दे हटाने, फजर के वक्त यूं लगता था घर में कोई तूफान आ गया, लाइटें खोल दो, बातें करो, उनके अपने उठने, बत्तियां जलाने करने। और उस वक्त के बुजुर्ग बच्चों से इतना नहीं डरते थे कि कदम भी उठाएं कि इन गरीबों की आंख ना खुल जाए। आज हमारा हाल तो ये कि हम उठा भी रहे होते हैं तो उस वक्त भी उनकी चादर ठीक ही कर रहे होते हैं कि इनको ठंड ना लग जाए, और उस वक्त में लो आज तो ये डिसेंसी की बात हो गई ना कि डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया, भाई ये रात को देर से सोया और इसे सुबह जल्दी स्कूल जाना है। हम तो अपने बच्चों से खौफ खाते हैं। मैं कहती हूँ अगर मेरे से कोई पूछे ना तो सुबह फजर से पहले हमारे घरों में ऊंची आवाज से तिलावत की आवाजें आनी चाहिए, शोर करें। आप गर्मी है तो एसी बंद कर दें, सर्दी है तो हीट बंद कर दें, बदतमीजी से नहीं करें कि खींच के उनकी चादरें उतार दें, लेकिन शुरू से घर का वो माहौल बनाए। और दुनिया की जब आसाइशें ज्यादा होती है तो हम सोचते हैं उसके साथ लाजिम मलजूम है कि हम अपने बच्चों की इन चीजों का ख्याल रखें, हालांकि एक घराना ऐसा है हमारे जानने वालों में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दोनों मियाँ बीवी अब चले गए, लेकिन हम छोटे होते से उनको देखते आ रहे हैं कि जो मिसल मशहूर थी हमारे घरों में कि सुबह 4 बजे तहज्जुद का वक्त है, उनके घर का सबसे छोटा बच्चा भी उठाता है और अब मियाँ भी ऊंची आवाज से कुरान पढ़ रहे हैं, वो ही आदत, और आज वो बच्चे देख ले उनकी उनके नाम रोशन कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि 7 बजे तो एक बच्चा उठ जाए तो 5:30 बजे ना उठे या 6 बजे ना उठे। हाँ फजर जब होगी 7 बजे तो जरूर उठेंगे। देखिए हम बातें बड़ी करते हैं लेकिन मुझे तो लगता है आजकल मेरे दिमाग पे सिर्फ उम्मत का लफ्ज सवार है, जिधर जिसको मैंने जिस मौके पे देखा है, जहाज में देखा है, सड़कों पे देखा है, ईदगाह में देखा है, मैं उसको ये कहती हूँ अल्लाह तेरे नबी का ये कैसा उम्मती है। मैं उसको अपनी नजर से नहीं देख रही होती या उसके साथ कौन है, उसके शौहर घर वाले क्या है, मैं ये सोच रही होती हूँ कि ये इस वक्त नबी का उम्मती कैसे है। तो मैं और आप अपने बच्चों के लिए अगर एक लफ्ज अपने लिए डाल दें कि मेरा तो ये बच्चा है नबी का उम्मती, चलो मेरा तो ये जैसा भी बच्चा है, लेकिन ये बताओ कि ये नबी का कैसा उम्मती है। हम अपने बच्चों के लिए होते हैं वल्लाही, हम अल्लाह के दीन को वैसे नहीं सोचते जैसे अपने बच्चों को सोचते हैं, जिस चीज की उनको जरा बराबर भी परवाह नहीं होनी ना अगले 10 साल बाद भी, हम उनके लिए वो भी जोड़ते हैं। बाद दफा बच्चियों को वो चीजें शादियां और जहेज के नाम पे देते हैं, कभी खोलनी नहीं, कभी पहननी नहीं, वो जेवरात जो कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाना सिवाय शादी के 1-2 दिन जो कि पहना दे, लेकिन हम कहते हैं बच्चे 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 बच्चे, लेकिन असल चीज क्या है, वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। क्या ये दुखने वाला नुक्ता है कि नहीं? इब्राहिम कौन थे? अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, वफाओं का हक अदा करके आजमाइशों में पूरे उतरे, लेकिन असल उनकी खूबी यहां समझ आ रही है कि उन्होंने नस्लें तैयार की। आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत नेक लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन नस्लें नहीं तैयार कर पा रहे, अकेले छुप छुप के तहज्जुदे पढ़ते हैं, सारा सारा दिन बुड्ढे बाप मस्जिदों में जाते रहेंगे, सफाइयां करेंगे, उनका जो काम करेंगे, लेकिन ये जरूरत नहीं है कि जवान बच्चे को कम से कम दिन में 5 वक्त उस नमाज पे फर्ज कर दे। मैं कहती हूँ ये माँ बाप की कमियां होती हैं, कच्ची शाख मुड़ जाती है, आप भी कमजोरी है कि आपका बच्चा 5 वक्त नमाज ना पढ़े 10 साल का होने के बाद, और फिर आप उसको गर्म और सर्द रोटियां बना के और खाने खिलाएं, ये मेरी और आपकी कमी है। अगर सिर्फ माँ और बाप ना, ये नस्लें जो है ना बदल जाती हैं। उनको पता है अभी जो भी कह रहे गालियां देंगे, बाद में इन्होंने हमें लाड करके मुंह में नवाले डाल रहे हो ना। हम सोचे, अपने ऊपर लेके सोचे, और इस सदी में जिस दौर से मैं और आप इस वक्त गुजर रहे हैं ये क्रिटिकल सदी है। मेरे और आपके बच्चे और हमारे बच्चों की नस्लें, इनके आगे बड़े बड़े अजदहे मुंह खोले हैं फिरौन वाले, निगल रहे हैं, पूरे पूरे स्वॉलोइंग स्वॉलो कर रहे हैं, और हम कभी कमजोर बच्चे छोड़ के इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन करने का ख्वाब नहीं देख सकते। आज घर बैठ के ना सोचें, जब फारिग हो ना तो सर पे रख के सोचें कि वाकई मुझे गम क्या है, बेटे को जॉब नहीं मिली भी इसका ज्यादा गम है, या उसके 5 वक्त का खुद से उठ के नमाज पढ़ना ना और दीन का शऊर ना होना, बेटी के रिश्ते और उसकी शादी की फिक्र है कि इसकी उम्र बढ़ गई और उम्र बढ़ती जा रही है, इसका गम ज्यादा है, मेरी शादी नहीं हो रही ये गम ज्यादा है, या अल्लाह का दीन नहीं फैल रहा, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक भेड़ चाल है, भेड़ चाल है ये। असल में यहां ये मिसालें दे के अल्लाह अगला सबक जो कल अल्लाह ने जिंदगी दी तो करेंगे, ये मनसब की तब्दीली की तैयारियां हो रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे कि एक कौम से, एक हुकूमत से इख्तियार छीन के अब दूसरे के सर पे ताज रखा जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा तुम्हें बहुत कुछ मिला है। ये जो आज हम मुसलमानों को चोटे पड़ रहे हैं ना, ये भी हमारी हो रही है, क्योंकि जब से लोग गुजरते हैं ना, काम तकलीफों से गुजरते हैं तो फिर खैर आती है। चारों तरफ आज इस्लाम के साथ जो मामला है, ये हमारे बच्चों के अंदर सोया हुआ ईमान जगवा रहा है। वो भी आज सोचने में पड़ेंगे कि हमारा क्या कसूर है, क्यों हमें गाली देते हो, हमें क्यों बुरा कहते हो। तो इसके लिए इंसान फिक्र करे, अपनी फिक्र करे, और कुर्बानी की कीमत पे किसी मकसद को इख्तियार करने वाला, यही अल्लाह के यहाँ कोई मुकाम पाता है। खुले खुले आम हालात है, मुझे आपको दीन का काम करना कोई मुश्किल नहीं, कोई कुर्बानी नहीं, नो प्रॉब्लम। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा मुकाम, याद रखें। कुर्बानियां करते जाएं और पीछे मुड़ के भी ना देखें, आपको पीछे से कामयाबियां पुकारेंगी। लेकिन आसानियों से, नरमियों से बातें करना, ये बच्चों की तरबियत कोई छोटा मसला है? मैं तो अक्सर सोचती हूँ, अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने इस जिम्मेदारी से आजाद रखा है। अभी यकीन करें, अल्लाह दे 100 दफा, ना दे 100 दफा, लेकिन इतनी बड़ी जवाबदेही है। नींद कैसे आती है? मैं तो अक्सर ये सोचती हूँ कि जिनके बच्चे जवान हैं या जवान होते हुए बच्चे हैं, उनको रातों को नींद कैसे आती है? बाहर एक मेन होल खुला होता है ना, तो माँ को फिक्र लग जाती है कि अंधेरे में बच्चे का पाँव ना उसमें पड़ जाए। यहाँ तो सार चारों तरफ फितनों के दरवाजे खुले हुए हैं। फिर हम कभी स्टेटस के नाम पे, कभी मजबूरियों के नाम पे कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं। मैं एक ऐसी बच्ची को जानती हूँ, यहाँ की बात नहीं बल्कि पाकिस्तान की बात है, कोई भी है इससे मुझे और आपको कोई ताल्लुक नहीं है। बच्ची को जुनून की हद तक शौक था, एक बड़ी ब्रांडेड यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में भी, मुझे उसमें दाखिल होना है। घर का माहौल अच्छा नपातुला, जैसे नमाजें भी पढ़ ली और वो भी था। खैर जिद करके बच्ची ने दाखिला ले लिया, और माँ बाप देते, मुझे याद इस वक्त नहीं, मेरा जो मेरे लाशौर में ना 3 लाख रुपए पाकिस्तान, सिर्फ दाखिला फीस या उनकी को फीस थी जो भी कर करा के दिया। मेरा ख्याल है कि 6 माह नहीं वो बची गई। तो उनको जो चीजें उसमें दिख रही हैं, वो बातें, जो फीलिंग्स थी, उन्होंने कहा कि नो मोर। वो तो अल्लाह का हुक्म ही ऐसा, तो उसका नसीब अच्छा था कि उसको सिलसिला कट डाउन करके उसकी शादी हो गई। अल्लाह ने उसकी सुन ली, मैं तो कहती हूँ। और आज शादी के बाद जब वो एक बड़े अच्छे बाशऊर इंसान के साथ जी रही है, वो खुद कहती है कि वो 1 साल जो मैंने उस यूनिवर्सिटी के माहौल में गुजारा, उसने मुझे कहाँ ले जाना था। आप क्या सोचते हैं, हम इल्हाद के साथ अपने बच्चों को इस्लाम तो नहीं दे सकते कि जहां आप हर चीज को कहे इट्स ओके और इट्स ओके। अल्लाह किन की बात सुना रहे हैं? नबियों की, चले छोड़े किस्से, बुजुर्गों के किस्से, मेरे आपके बड़ों के किस्से, हु केयर्स, ये नबियों के किस्से हैं। और इस जमीन पे नबी कौन होते हैं? ये रोशनी के मीनार होते हैं, ये वो सर्च लाइट्स हैं जिनकी रोशनी में नस्लें चलती हैं। और अल्लाह कहते हैं अनम तो अलैहिम, पहले दिन से सबक है सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। अब बताएं कि जब अल्लाह कह रहे कामयाब ये लोग हैं, इनके हाथों में टार्च है, तो क्या हम लोगों को पाल के कामयाबियों की उम्मीद रखते हैं? और रखेंगे तो सरासर बेकार। आज देखिए खुशी हमें भी नहीं मिली, फिर अगर अगर हमें औलाद की दीन नहीं मिला ना, तो औलाद हमारे लिए भी कोई खुशी का जरिया नहीं बनी, वो हमें भी घूरती। इतना मर्जी घी के लुकमे उनको आप खिलाएं, हाथ से लुकमे तोड़े, कभी बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं कर सकते जब तक उनको अल्लाह की कदर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तो उससे ज्यादा खिलाता है। आप तो माँ है, वो तो 70 माँ से ज्यादा है, वो तो रब्बुल आलमीन है। उसका नहीं सिखाएंगे ना, उनका नहीं बनाएंगे, तो आपके नहीं बनेंगे, मेरे नहीं बनेंगे, तो मेरा नहीं बनता अपना तो बन। जो अल्लाह का नहीं अपना नहीं होता, वो अल्लाह का नहीं होता, वो अपना भी नहीं रहता। आप सूरह हशर में पढ़ेंगे, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, मत हो जाओ उन लोगों जैसे जो अल्लाह को भूल गए। फानसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह ने उनको उनकी जान ही भुला दी, वो फिर अल्लाह को नहीं भूलते, खुद को भी भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं अमकुन तुम शुहदा इज हजर याकूब अल मौत। और पीछे कई बार बात हो गई कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे हजरत याकूब, और हजरत इसहाक के बेटे थे। नबियों की नस्ल है, जिसको आप कहें कि जद्दी पुश्ती खानदानी नबी थे, नबी जादे थे। आज कुछ लोग सिर्फ खुद को सैयद ज्यादा कहकर जन्नती कर लेते हैं कि हम जन्नती हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, ये उनकी बातें थी, نبیوں کو اپنے آخری لمحوں میں اس بات کی فکر لگی ہوئی ہے جس کی ہمیں اپنی زندگی میں شروع میں بھی نہیں لگتی. اور بچے بھی کیسے خوش قسمت
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
آپ ان جملوں کو لکھ کے بولنا چاہیں لیکن اگر آپ کے اندر وہ درد نہیں ہوگا نا تو اس کے اندر تاثیر نہیں آئے گی. اس لیے سوچیں, کچھ کچھ کریں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کریں. ان کو اللہ سے جوڑنے کا طریقہ ان کو اللہ کے دین سے جوڑنا ہے. ان سے نیکیوں کے کام کرائیں پھر آپ دیکھیں گے فائدہ ہوگا. تل کا امت ان قد خلط, وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. یہاں سے یہود کے دوسرے شوشے کی طرف اشارہ ہے. ایک تو کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت یہودی بننے کی دعوت دی, اور دوسرا کیا کرتے تھے کہ نبیوں کی ساری نیکیاں اپنے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے. کوئی کام خود کرے نہ کرے کہتے تھے ابراہیم کی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گی, اسحاق کی نیکیاں ہمارے کام آ جائیں گی, یعقوب کی نیکیاں کام آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نیکیاں کوئی ٹیم ورک نہیں ہے. تل کا امت ان قد خلط, یہ ایک امت تھی گزر گئی, دیٹس اٹ, ختم. جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے تھا, اب تم ان کے ساتھ فخر کرتے ہوئے ان کے نام کے ساتھ اپنے نام جوڑ کے صرف نسبت سے فائدہ اٹھاؤ گے تو جھوٹ ہے. کیوں؟ لہا ما کسبت, ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا, واٹ دے ہیڈ ارن ان کو مل گیا اس کا نتیجہ. ولکم ما کسبتم, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے. ہاں ولا تسلونا عما کانوا یعملون, تم نہیں پوچھے جاؤ گے ان کے بارے میں جو انہوں نے عمل کیے تھے. ان کا کام ان کا تھا, تمہارا کام تمہارا ہے. کیا پتا چلا کہ بعض لوگ وہ نعمت یا وہ آنر جو پچھلے لوگوں کو محنت کی وجہ سے ملی ہوتی ہے, بعد میں آنے والے اس کو صرف نسبت کی بنیاد پہ لینا چاہتے ہیں. مثال دیتی ہوں, جیسے ایک شخص ہے, ساری زندگی اس نے حلال کے ساتھ کمایا اور خوب محنت کی اور ایک بہت بڑا نام بنا لیا سوسائٹی میں, مناپلی ہوگی اس کے نام کی. اب کیا وہ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوا تو بیٹے سامنے آ گئے, بیٹوں کو وہ سب چیزیں بنی بنائی ملی, باپ کا نام بھی چلتا ہے اور اس کی ساکھ بھی بہت ہے, دولت بھی بہت ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, اب کیا ہوگا؟ بیٹے کیا سوچیں گے کہ صرف باپ کے نام پہ جو عزت بنی ہے ہماری کمپنی کے, اس کی بنیاد پہ ہمارا کاروبار چلتا رہے گا؟ چلتا ہے؟ اگر وہ محنت نہ کریں اور اس رولز کو فالو نہ کریں اور وہ کوالٹی نہ رکھیں گے تو کچھ سالوں میں کیا ہوگا؟ فلوپ, بینکرپسی. یہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کی نن کرنے کی بجائے اپنا فکر کرو. باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, جو کام کرے گا اس کو کچھ ملے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. دیکھیے کہ جب کوئی ٹیم کسی جگہ کھیل رہی ہوتی ہے نا, امیجینیشن میں لائیں کرکٹ, 10-12 کھلاڑی ایک ٹیم کے ہیں, صرف ایک کھلاڑی اینڈ پہ چھکا لگاتا ہے اور میچ جیت گئی پوری ٹیم. فتح کس کی ہوتی ہے؟ ٹیم کی. نام کس کا بلند ہوتا ہے؟ ملک کا. ایسے ہی ہے نا, چھکے نے باقی 11 کو بھی عزت دے دی. دین میں ایسا نہیں ہوتا, نیکیوں میں ٹیم ورک نہیں ہے کہ صرف ایک نے چھکا لگا دیا تو باقی سارے اس چھکے میں جنت کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جائیں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, باپ کی نیکیاں بیٹے کو اور بیٹے کی باپ کو نہیں آئیں گی. ایک خاص حد تک اللہ رستہ دکھا دیتا ہے دوسروں کی بنیاد پہ, لیکن عمل اپنا ہی کرنا پڑے گا. اور اگر آپ اپوزٹ ہو, آپ جا کے دشمن کی ٹیم سے کھیلنے لگ جائیں تو کیا آپ کو آنر ملے گی؟ آج ہمارا حال کیا کہ ہم شیطان کی باتیں مان کے دشمن کے طریقوں پہ چل رہے ہوتے ہیں اور فخر کیا کرتے ہیں کہ امت محمدی ہیں جی, ہم اسماعیل, ہم سید ہیں. اور ہم ہاشمی خاندان سے ہیں اور ہمیں کون پوچھے، اور ہماری تو پشتی پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کھول دی آنکھیں کہ سب پیچھے ہوگا. اب دیکھیں اس آیت کو آپ نے پڑھا اور آپ کو لگا نا کہ اس میں کتنا ایک پرسوز قسم کا میسج ہے. کچھ لوگ انتہائی بدترین قسم کی تعبیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اسلام کمانے کو جائز کرتا ہے اور حکم دیتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے 1% کمائے اور سارے کھائیں، اور ایک ہوتا ہے کہ 2 لوگ کمائیں اور کھائیں. تو کہتے ہیں دیکھو لہا ماں کا سبت ولکو ماں کا سبت، جو مرد کماتا ہے وہ مرد کے لیے، جو عورت کماتی ہے اس کے لیے. کتنی بری تعویل ہے. یعنی ایسے ایسے ریفرنسز آپ کو سنائے جاتے ہیں جب کبھی آپ ایسے لوگوں کی سپیچز سنتے ہیں اور سکرینوں پہ آ کے بولتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں واہ واہ واہ، یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے. آگے بھی آئے گی یہ بات اشارت اسی سبق میں. تو یہ تعویل ہوتی ہے کہ جی مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے. کسب کا لفظ عموماً 98% قرآن پاک میں آخرت کی کمائی کے لیے آتا ہے، اور دنیا کے لیے فضل کا لفظ آتا ہے. جیسے مسجد سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتی ہوں، تو یہاں آخرت کی بات ہے. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کون کیا کر گیا، وہ اچھے تھے برے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ نبیوں کی اولادوں کو تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو کر چکے ان کو مل گیا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما کانوا یعملون، اس میں ایک سوال ہے. ہمارے بڑوں میں کوئی برا کام کرتا تھا، غلط کرتا تھا، کوئی بدعت تھی، شرک تھا، اللہ کہتا ہے تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر تم علم لانے کے بعد اچھے کام شروع کر دو اور ان کے لیے دعا کرو، ہو سکتا ہے وہ بھولے بھالے تھے، سیدھے تھے، ان تک وہ علم نہیں پہنچا جو تمہارے پاس پہنچ گیا. تو لہٰذا پتا کیا چل گیا کہ گمراہی. ہدایت کیا کہ حق بات معلوم ہو گئی اور آپ نے اس پہ عمل شروع کر دیا، پتا چل گیا اس بارے میں کیا کچھ ہے. زلالت کیا ہوتی ہے کہ حق بات معلوم نہیں ہوئی تو عمل بھی نہیں کیا، بھٹکے ہوئے تھے نا. اور اس سے بڑھ کے کیا کہ حق بات معلوم ہو جائے، نہ حق بات معلوم ہوئی نہ عمل کیا. تو ہر بندے کا معاملہ اللہ کے پاس انڈیویجل بیسس پہ جائے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ فکر اپنی کرنی ہے. انبیاء کرام کی اس وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ ساری زندگی جس مقصد کے حصول میں لگا دی، آخری وقت میں انہوں نے اولاد کو اسی کی فکر لگائی. ان کو مال اور دولت کے اور کوٹھیوں کاروں کے سپرد نہیں کیا، انہوں نے اولاد کی روحانی تربیت کی، اخلاقی تربیت کی. ان کو وہ دولت دی کہ جو کبھی ڈالر کے اور پاؤنڈ کے ریٹ سے کمتی بڑھتی نہیں ہے. کہ اب اکانومک فلاپ ہو گیا تو ساری جائیدادیں ڈوب گئیں، اور یہ بڑھ گئی تو یہ ہو گئی. انہوں نے ایک ایسا نسخہ اپنی اولادوں کو دے دیا کہ وقت کے اتار چڑھاؤ سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں باپ جو دن رات ایک کر کے اپنے بچوں کے لیے مال اور دولت کے انبار جمع، لیکن روحانی تربیت سے غافل رہتے ہیں، وہ اولاد پہ کوئی احسان نہیں کر رہے بلکہ ان پہ ظلم کر رہے ہیں. اسی کا آدھا وقت بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تعلیم دونوں کے لیے لگایا جائے تو شاید زیادہ بڑی بات ہوگی. امام احمد کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، موت کی بے ہوشیوں میں تھے، اور جب ایسے بے ہوشی میں گئے نا تو کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، پھر ڈوب جاتے غمرات الموت میں. خیر دوبارہ طبیعت سنبھلی تو ان کے بچوں نے کہا کہ ابا یہ آپ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس شیطان آیا تھا اور کہنے لگا کہ اے امام احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، ساری زندگی میں نے تجھے کتنا کوشش کیا بہکانے کی لیکن اب تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. تو میں اس کو کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں، کیوں؟ کہ ابھی میں زندہ ہوں، جب تک کہ میں دنیا سے سلامت چلا نہ جاؤں. آخری وقت تک شیطان ہمارے پیچھے آتا ہے. موت کی بیہوشیوں میں کہتے ہیں کہ پانی لے آتا ہے، یہ پانی دیتا ہوں. یہ میں نے حدیث میں نہیں پڑھا کہیں لیکن معروف بات ہے، یہ تو ملتا ہے کہ موت میں شیطان بہکاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس وقت اپنے سجدے کی بنیاد پہ بندے سے کیا کچھ کام کراتا ہے، مجھے سجدہ کر لو میں مانوں گا. سورت حشر میں آپ پڑھیں گے اس پہ، آج شیطان کے آتا ہے انسان کا، کہتا ہے کفر کر، اور جب کفر بندہ کرتا ہے تو پھر کہتا ہے میں بری ہوں تم سے. تو اس لیے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے. ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، एक एक दिन कीमती है, एक एक ईंट है। आज का दिन अगर आज की ईंट टेढ़ी लगी ना, तो अगला दिन कभी सीधा नहीं होगा। आज सुबह अच्छी नहीं है तो शाम अच्छी कभी नहीं होगी। ये नहीं हो सकता सारी जिंदगी जो चाहो करो और मौत के फरिश्ते को देकर कलमा पढ़ने लग जाए, इम्पॉसिबल। गालिबन इमाम दा इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये जो मरते वक्त कलमा नसीब होता है ना, ये कहाँ से होता है? सारी जिंदगी बंदा मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, तो मौत के फरिश्ते को देकर वहशत की वजह से वो बात दिल में जुबान पे आ जाती है। जैसे चोर को देखें तो एकदम लोग सच बोलने लगते हैं ना, चाबियां उधर रखी हैं, घर उधर है, वो ले लो मुझे छोड़ दो। तो मौत के वक्त झूठ नहीं बंदा बोलता, और जिसके दिल में मौत है ही नहीं था वो क्या करेगा? अब आप बताइए, एक बंदा सारी जिंदगी सारा दिन दौड़ लगी हुई है, दुनिया 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 दुनिया, इधर दुनिया उधर दुनिया उधर दुनिया इधर, एक लम्हे में मौत आ गई, तो क्या उस वक्त वो दीन देखेगा? दीन तो हमारी कहीं लाश कोने में खुदरे में पड़ा हुआ है अभी भी, आज भी। इसलिए अपने आप को छांटे, कितना मुखलिस हो रही हूँ, कितना हो रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, और सच्चा रास्ता अल्लाह का रास्ता है। कुछ लोग जो काम खुद कर रहे होते हैं कहते हैं यही ठीक रास्ता है, नहीं मेरा रास्ता नहीं अल्लाह का रास्ता। और नबियों की कामयाबी की वजह ये बनी कि उन्होंने औलाद को रब से जोड़ा, इलाह का आबाई और दिस एंड दैट। अब ये बात उनकी नस्लों ने भुला दी, इतनी बात पे आगे नबी दुनिया से जाते जाते तो यही कह के गए। उनके जाहरी जो सामने बैठे थे, जिसको सुलभी बैठे के उन्होंने कह भी दिया अब्बा जी फिक्र ना करेंगे, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ? अब ये दोनों आयतों 134 और 135 के बीच में ये जुमला लिख लें, लेकिन गुजरते वक्त के साथ क्या हुआ? नबियों की उन वसीयतों पे अमल छूटा और खुशफहमियां शुरू हो गई। जो बात माँ बाप ने सिखाई थी उसको भूल गए, जैसे कुछ मुसलमान भी आज अपने ही माँ बाप की कई खूबसूरत सिखाई हुई बातें भूले हुए और फिरकों में बट गए। इलाह की इबादत करने की बजाय, एक अल्लाह का बनने की बजाय किस चीज पे आगे? असल दीन को छोड़ा। यहां से आपको आज उम्मते मुस्लिमा की जो गुमराही है उसकी वजह एक और तरह से आज समझ आ जाएगी कि अल्लाह की जात जब तक बीच में रहती है ना मुसलमानों के, वो एक जुड़े रहते हैं, बिल्कुल तस्बीह की डोरी की तरह। डोरी बीच में है तो 100 तरह के मोती डाले, वो एक ही डोरी के बीच में घूमेंगे, छोटे मोती बड़े मोती पीले नीले रंग बिरंगे मोती चलते जाएंगे। लेकिन जब वो डोरी कटती है ना, तो एक ही तरह के मोती क्यों ना हो, ऐसे बिखरेंगे कि इस कमरे में कहीं आपको नजर भी नहीं आएंगे। यही उम्मतों के साथ हुआ, कल के यहूद के साथ, आज के मुसलमानों के साथ। जब नबी दुनिया से जाते हैं तो वो उम्मत को ऐसी ही वसीयतें करते हैं। और यहाँ आपको अगर इशारतन हल्का सा एक होमवर्क दे दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मैसेज भी सुने, हज्जे खुद इंतकाल हुआ, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, अस्सलातु वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज नमाज नमाज, और अपने मातहत अपने मातहत इनकी केयर करो। और खुतबतुल हज्जतुल विदा ना, उसके कई डिफरेंट एडिशन हमें मिलते हैं इस हदीस की किताबों में, आप पढ़ के देखे, बिल्कुल पूरी इस्लामी शरीयत का खुलासा है। अल्लाह के नबी ने भी ये वसीयतें की थी, ला इलाहा इल्लल्लाह से लेके इंसानी हकूक और मामलात तक, मुसलमान उस पे ही रहे। खैरुल कुरून करनी, सहाबा का दौर, उसके बाद ताबईन का दौर, चलते रहे नबियों के साथ। यहां भी यही मामला हो रहा है, जब ये सब हो गया ना, लेकिन बाद में आने वालों ने इन बातों को याद रखने की बजाय सिर्फ उन निस्बतों पे फखर किया। नतीजा क्या हुआ कि उनकी उम्मत फिरकों में बट गई। फिरका बनता ही तब है जब फर्क होता है, ऐसे ही है ना, फर्क से है ना फिरका। अल्लाह के साथ सब जुड़े रहेंगे तो सब एक बनेंगे, और जब अल्लाह के तरीकों से नबी के तरीकों से हटेंगे, चाहे दीन के नाम पे हटेंगे, तो फिरकाबाजी हो गई। और जब फिरकाबाजी होती है ना, तो कामयाबी की बुनियाद अल्लाह और उसका दीन नहीं होता, बल्कि क्या है? अब इस आयत को सुनिए, आयत 135, वकालू, और उन्होंने कहा, किसने कहा? यहूद ने कहा और नसारा ने कहा और आज के मुसलमान कहते हैं क्या? कूनू हूदन, यहूदी बन जाओ। और नसारा, नसारा ने क्या क्या? नहीं, नसारा बनो, क्रिश्चियन बनो। क्या होगा? दोनों का दावा कहता तह तदू, तुम हिदायत पा जाओगे। یہود نے ہدایت کا معیار رکھا کہ خود کو یہودی کہلاؤ، نصارہ نے ہدایت پہ ہونے کا معیار رکھا کہ خود کو نصارہ کہو، فرقہ وارانہ نام دے دیے، صرف ناموں کی نسبت پہ خود کو جنت میں جانے کے قابل کہا، ہو جاؤ ہدایت پہ آ جاؤ گے. نام تھے یہ دونوں خود ساختہ، بہت دفعہ بتا چکی ہوں پیچھے، اللہ نے نام نہیں دیے. نام کیا دیا تھا اللہ نے؟ ہوا سماکم المسلمین، سورۃ حج. انہوں نے کہا یہودی بنو نصرانی بنو، یہ کرو وہ کرو، ہوگا کہ ہدایت پاؤ گے. آج مسلمان بھی ایسے نہیں کہتے؟ اگر آج مسلمانوں کے یہودیت اور نصرانیت کی طرح، تو آج کا مسلمان کیا آپ کو کچھ اس قسم کی باتیں کرتا نہیں دکھتا؟ کونو بریلوی تحتدو، کونو دیوبندی تحتدو، کونو مسلکوں کے فرقوں کے نام لکھتے جائیے. کہ آج مسلمان کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے؟ ہر گروہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جس پہ وہ ہے. ہدایت کا معیار اپنے فرقے اور اپنی جماعت سے، جیسے مختلف فرقے ہیں نا، یا جیسے اسکول آف تھاٹس ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، احمد، جو بھی نام ہے نا، یہ بگ لیول ہے. کل تک تو چلے یہ تھا نا ایم اے کرام کے نام پہ، اب دن بدن فرقوں سے بھی زیادہ چیز چھوٹی جماعت. جماعت کیا ہوتی ہے؟ جمع سے، چند لوگ جمع ہوتے ہیں گروپ. جیسے آج ہم جمع ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، جمع ہوئے نا، یہ اس وقت ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ہوا کیا کہ جماعتوں کے نام کہہ دیا، کونو فلاں نام کے ساتھ تحتدو، ہماری جماعت میں آ جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، ہمارے نام کا سلوگن یوز کر لو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور دس اینڈ دیٹ. اور وہ بات بڑی سے ہوتے ہوتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے. جیسے آپ کے پاس ایک رسی ہو نا، کوئی آپ کو کہ اس کو کاٹو، تو شروع میں کوئی کاٹے گا نا، اس کے چار بڑے بڑے ٹکڑے کر دے گا. اور آپ دیکھیں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہاتھ میں کینچی لے کے نا بیٹھتے باتیں کرتے، تو کچھ نہ کچھ کاٹتے ہی رہتے ہیں. وہ چار ٹکڑوں کو بھی جب آپ پکڑ کے کھیلیں گے نا، تو آپ چورا چورا کر دیں گے. مسلمانوں کا آج یہ حال ہے، وحدانیت، اجتماعی کام پیچھے اور نام الگ. گروپ بننے، نام ہونے کوئی بری بات نہیں ہے، ظاہر ہے کسی نام سے ہی کوئی کام کریں گے، اٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن جب اسی کے اندر ہدایت ہے اور اس کے دروازے کے باہر ہدایت ختم ہو گئی، تو یہی ہے وہ سوچ جس کو ادھر کا تحتدو، یعنی ہدایت کا سورس صرف ہمارا نام ہے، کام نہیں نام. ہدایت پا جاؤ گے، اللہ کہتے غلط. اب ان دونوں جملوں کے بیچ میں لکھ لیں نو ناٹ، نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ لو گے تو بچ جاؤ گے، بلکہ قل، اے نبی اب آپ ان کو اخلاق سکھائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کا طریقہ. یہ کس کی طرف آیا اشارہ، ذرا آیت کے ساتھ دیکھ کے بتا سکتے؟ تحتدو کے ساتھ ہے. ہدایت پانے کا معیار کیا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ. اور آج کے سبق کا پہلا لفظ ہی دیکھ لے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ، ایک ہی سبق آ رہا ہے نا بار بار، ملت ابراہیمی، ربانیت، رب والے بن جاؤ، نفس کے بندے نہیں رب کے بنو. کون سا ابراہیم؟ حنیفن، جو حنیف تھے، فوکسڈ، سب سے کٹ کے رب کا ہونے والا. اس کا اپوزٹ عربی میں جنیف ہوتا ہے، جنفا سے مائل ہونے والا، ادھر سے ادھر جھکنے والا. اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. گویا کہ بتا دیا کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں. یہودیت اپنا یہ جو نام ہے نا آج یہودیت کا، اپنے نام اور اپنے مذہبی خصوصیات سے جو آج ہمیں دیکھتے ہیں نا، یہ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی. لکھ لیں، آج جو مذہب یہودیت کے نام کو آپ کو ملتا ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے تقریباً 300-400 سال پہلے ایجاد ہوا. اگر آپ اس سے اوپر جائیں نا، تو لفظ یہود نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور عیسائیت جس کو آج کے دور میں آپ عیسائی یا عیسائیت کہتے ہیں نا، تو یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. حیرت ہو رہی ہے؟ عیسائیت، کرسچینٹی حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بعد شروع ہوا، لمبا عرصہ گزرا. وہ بھی ایک ہسٹری، اب سورہ آل عمران میں کچھ اس پہ پڑھ لیں گے کافی چیزیں. جو نام اس دور میں موجود ہی نہیں تھے، ان کی نصیحت کیسے کر سکتے ہیں نبی دنیا سے جاتے ہوئے؟ सवाल बात जो समझ आई बात, ये कह रहे कि वो कह के गए थे कि तुम यहूदी हो के मरना हजरत याकूब, तो हजरत याकूब की जिंदगी में तो यहूदियत नाम का कोई मजहब ही नहीं था। बनी इसराइल अल्लाह ने इनको कहा या अहले किताब का, ये बिल्कुल ऐसी बात है अगर आप समझना चाहें कि जैसे कोई बच्चा ये कहे कि मैं अपने अम्मी अब्बू की शादी पे आया था, नामुमकिन है ना। बिल्कुल यही बात है, अल्लाह ताला कह रहे हैं जो नाम उस दौर में थे ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो कि नबियों ने इसकी बात कही थी, गलत है। फिर क्या सही है? तो कुलु आमन्ना बिल्लाह, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, वमा उन्जिला इलैना, और जो हमारी तरफ नाजिल हुआ। ये किताब किससे है? मुसलमानों से है। तुम यहूदियों और नसरानियों की इस दावत के जवाब में कहो नहीं थैंक यू वेरी मच आपकी ऑफर का, हमारा नबी आ गया, अब हम अल्लाह पर ईमान के बाद वमा उन्जिला इलैना यानी खातिमुन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे राजी हैं, कहो अमल से भी कहो। और ये कोई नया दीन नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बल्कि व मा उन्ज़िला इला इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व अलअस्बात, और जो नाजिल किया कि इब्राहिम की तरफ और इस्माइल और इसहाक याकूब और उनकी औलाद की तरफ, मुराद क्या कि ये सब एक ही कड़ी की डिफरेंट चेन्स थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गाड़ी का आखिरी डब्बा है जिसका पहली जिसकी पहली बोगी हजरत आदम थे, ये सब एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, पटरी एक ही थी। हम आखिरी बोगी में बैठे हैं, पहली बोगी वाला और आखिरी बोगी एक ही जगह पहुंचती है ना, शर्त क्या है कि एक ही ट्रैक हो। ये सारा दीन है, लिहाजा इसी पर हो। यहाँ जो लफ्ज है ना असबात, सिफ्त से पोते और नवासे के लिए आता है, फैलना असबाता का लफ्ज आता है, बच्चे पोते नवासे बंदे की नस्ल को फैलाते हैं, इसकी तरफ इशारा है। यहाँ कोई रंग नस्ल कुछ भी हो सकती है लेकिन एक ही तरह के लोग। मजीद आगे बात बढ़ी, वमाउती है मूसा व ईसा वमाउती है नबी रबिम, और जो दिया गया मूसा और ईसा को और जो अता व सब अम्बिया कराम को उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु बैना अहद मिनहुम, हम इनमें से किसी में कोई तफरीक नहीं पैदा करते। तफरीक से यहाँ क्या मुराद है कि ये हक पे थे ये हक पे नहीं थे? नहीं, ये जायज़ दो लफ्ज हैं, ये तीसरे बारे के शुरू में वाजे करूंगी, तफरीक बैन अल अंबिया और एक तफदील बैन अल अंबिया। तफरीक हराम है, कुफर है कि एक नबी को माने दूसरे को नहीं माने, गलत है। तफदील हकीकत है, फजल है, एक को अल्लाह ने कुछ कहा की, एक को अल्लाह ने अपने हाथ से बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। हम किसी नबी को रिजेक्ट नहीं करते, असल में इसमें इशारा फिर यहूद मदीना को है कि तुम सारे नबियों को मानते रहो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानोगे तो तुम दीन पे नहीं हो। और ईसाइयों को भी कह दिया तुम सारे नबियों को मानो लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानोगे तो तुम दीन पे नहीं हो। व नहनु लहू मुस्लिमून, और हम उसके लिए फरमाबरदार हैं। हु क्या है? अल्लाह की जात, अल्लाह के आगे हम झुके हुए हैं, हम उस पे रहेंगे। ये है पूरे, आप कह लें कि जो हम पढ़ते हैं ना ईमाने मुफस्सल ईमाने मजमू, जब सुने मैं बचपन से ही आमंतु बिल्लाही वक्त, तो ये असल में इस्लामी अकीदे की जुजियात है। खोल के बयान कर दिया कि बुनियादी असूल एक ही है कि अल्लाह की बड़ाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना, ये है कामयाबी का। और यहां से ये भी पता चलता है कि फिरका बंदी सारी खत्म होगी तो इन्हीं दो नामों पे होगी, कालल्ला व काल रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से जुड़ेंगे अपने आप को बगैर किसी फिरके के मसले के। आज आप देखिए यहूदियत नसरानियत की हम बातें करते हैं तो वो कौन थे? तो आज लोग कहते हैं ना आपको अपना एक नाम रखना चाहिए, कोई तो फिरका हो, तो पूछिए अबू बकर का फिरका क्या था, उमर का फिरका क्या था। अगर आप कहेंगे मिसाल है कि अबू बकर जो थे वो हनफी थे, कह सकते हैं ना जो लोग अपने आप को हनफी कहते हैं, तो क्या हजरत अबू बकर के दौर में हनफी मसलक शुरू हो चुका? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, यहां तक आ जाए, और यहां से पहले इमाम का दौर शुरू होता है, एक इमाम दूसरा, ये बीच में कई सौ साल बिल्कुल कोई मसलक नहीं था, ये कल की बातें हैं। आप अगर कहते हैं अबू बकर हनफी थे तो आप ऐसे ही कह रहे हैं जैसे अपने बाप की शादी में बच्चा आने की बात करें, वो मसलक थे ही नहीं जिनके नाम लेके आज हम उम्मत को तोड़ रहे हैं। ये जुल्म की हद है कि हम ऐसे काम करते हैं और फिर कहते हैं कि इस तरह की बातें हैं। इन सारी चीजों को अल्लाह ताला खत्म करने का एक ही तरीका बताते हैं कि तुम वल मिल्लत इब्राहिम, यही आज हमारा मसलक है, यही हमारी सोच है कि हम قرآن اور سنت کو لے کر چلیں گے تو پھر بات بنے گی. یہ نہیں کہ سنی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے, شیعہ بن جاؤ, بریلوی بن جاؤ اور فلاں فلاں بن جاؤ بناؤ. یہ چند نام ہے, آگے کہیں بات آئے گی, سورہ آل عمران میں بہت بات آئے گی اس کے اوپر. تو وہاں جا کے ان کی ہسٹری پڑھ لیجئے گا تھوڑی تھوڑی. یہ کوئی کسی شہر کا نام ہے؟ بریلی شہر ہے, دیوبند ایک شہر ہے, ہاں کچھ شخصیات کے نام ہے, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام پہ حنفی اور اس طرح امام مالک کے نام پہ مالکی. آج لوگ چوریاں کریں, نمازیں نہ پڑھیں, کسی کو کوئی فرق نہیں, کپڑے دن بدن چھوٹے سے چھوٹے پہنتے تھے کوئی فرق نہیں, لیکن جو ہی کوئی ایک مسلک چھوڑ کے قرآن سنت پہ جاتا ہے لوگوں کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ وہابی ہو گیا اور یہ فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا. آج ہماری کہاں تسلی ہوتی ہے خود کو مسلمان کہہ کر؟ کچھ تو ہوگا, چھپا رہے ہیں. نہیں کچھ تو ہوگا, آپ سے بھی لوگ کہتے ہوں گے آپ کے استاد کا مسلک کیا, اس کا نام پوچھ کے کیا کرتے ہیں, کس کو نہیں. یہ جو کچھ نہیں ہوتا نا کہتے ہیں وہ وہابی ہوتے ہیں. نہیں یہ کچھ تو ہوں گے. تو اپنا نام خوبصورت رکھیں, کسی سے جڑنا ہے عزت سب کی کرنی ہے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جا کے فتوی دے دیں کہ فلاں بھی کافر فلاں بھی جہنمی, نیور. کسی عالم کو کسی دیندار کو کچھ نہیں کہنا, عزت سب کی کریں, سب دینداروں سے فائدہ اٹھائیں, رسپیکٹ کریں ان کے, اچھی بات جو صحیح سمجھ آپ کے مطلب کی لے لے, لیکن لوگوں سے نہیں جوڑنا, علماء سے نہیں جوڑنا, مسلکوں سے نہیں جوڑنا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا. آپ دیکھیے گا تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن امت جڑ جائے گی. اور الحمدللہ نیو مسلمز کے زون پہ جو بات شروع ہوئی ہے, یا آج ویسٹ میں جس انداز سے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے اس میں اب اس کی کافی اثار شروع ہو گئے. ہمارے علاقے جو اپنے ملکوں کے جو عرب سے قریب تھے, پاکستان انڈیا, وہاں سے فرقہ واریت یوں پنپی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. چھوٹی سی چار لفظ پڑھ کے اپنی جماعت بنا لی. اب باہر والے لوگ جب کھلے ذہن کے ساتھ اس چیز پہ آ رہے ہیں, کیونکہ جب مسلم کوئی ہوتا ہے تو اس کو قرآن اور سنت کی اب دعوت دیتے ہیں نا. اور الحمدللہ اب یہ شعور دن بدن عام ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی سوچ بن رہی ہے. میں یہ باتیں آپ کو زبانی کہتی تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آنی تھی. سورۃ الانعام آیت 159 کو بھی نوٹ کر لیں, اس کا ترجمہ آپ جا کے خود لکھیے گا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا اور کئی فرقوں میں اللہ کے سپرد ہے کہ وہ کن کاموں میں مصروف ہیں, تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. اب یہاں سے آگے بالکل آخری ٹاپک, پارے کا اختتام. پورے پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. جتنی باتیں ہوئی آپ کے سامنے ہیں, ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھی اور پڑھائی. ابھی جس مقام پہ میں کھڑا کیا ہوا یہی بتا دیا کہ فرقہ واریت چھوڑ کر آمنت باللہ کی بات کرو اور اس پہ کرو. کر کرا کے سب کچھ کیا, اب کیا کہا؟ فائن آمنو, پس اگر یہ ایمان لے آئے. کون لکھ لیں؟ اہل کتاب اور آج کے مسلمان بھی. ما من تم بھی, جس طرح کے تم ایمان لائے ہو. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہا جائے گا تو جمع کا صیغہ نہ آتا, تو صحابہ کا ایمان. اگر یہ بعد والے یعنی آج ہم سب اور اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے, اگر وہ ویسا ایمان لے آئیں جیسا ایمان تم لائے ہو, یعنی صحابہ کرام تم جیسا ایمان لے کر آئے ہو, تو فقد اہتدوا, بس وہ تحقیق ہدایت پا گئے. کتنا آسان ہے ہدایت کا یہ نقطہ سمجھنا. ایک کرائیٹیرین بنا دیا, ایک سانچا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا, کہ آپ کو کسی نے ایک چھوٹا سا سانچا دیا اور کہا بس اس میں برف بناتے جو ہر ٹکڑی بالکل دوسری کے برابر ہوگی. تو حدیث سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک سکیلٹن ہے, ڈالتے جاؤ کہ وہ قبول ہوگا, جو باہر ہوگی چیز وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. لیکن نہیں مانتے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر تم منہ پھیرو, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو بس بے شک وہ تو مخالفت میں پڑ گئے. اللہ نے معیار دے دیا تھا اور اب شرط, فائن جو ہے نا ان شرطی ہے, ادھر شرط لگائی جا رہی ہے, مراد یہ کہ کنڈیشن دے دی. اگر یہ نہیں ہوگا, منہ پھیرتے ہو نبی کا نام لیکن طریقے اپنے راستے اپنے, تو یاد کرو, یاد رکھو کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, پھر ان کے مقابلے میں اللہ آپ کی حمایت کو کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. جب سارا ہی آوے کعبہ بگڑا ہونا تو بندے کو اپنے آپ کو چینج کرتے ہو کہ ڈر لگتا ہے, خاندان چھوڑ دے گا, برادری چھوڑ دے گی, دوست ساتھی مجھے چھوڑ دیں گے. تو اللہ ڈرا رہا ہے کہ فکر نہیں کرو, سارے بھی تمہیں چھوڑ دیں گے نا قرآن سنت میں آنے کی وجہ سے, تو اللہ تمہیں اس معاملے میں کافی ہو جائے گا. تنہائی ہوتی ہے بندے کو اپنے آپ کو بدلنے کے سوچنے کے ساتھ، تو اللہ بدل دے گا. یہ ہے وہ آیت جس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کو ایک باغی گروہ نے قید کر دیا تھا، 40 دن کے بھوکے تھے اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا. اور ایک دن اٹھتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کھانے کو کچھ ہے؟ کہنے لگی ہے تو کچھ نہیں، میں دیکھتی ہوں کچھ. اور آنکھ لگ گئی. جب آنکھ اٹھی تو بیوی سے کہنے لگے کہ مجھے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور کہنے لگے کہ عثمان، آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. اور اتنی دیر میں باغیوں نے گھر کا دروازہ توڑا اور حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا. بیوی بچانے کے لیے آئی تو ان کی یہ انگلیاں کٹ گئیں، اور اس وقت بھی حضرت عثمان کے سامنے قرآن تھا اور ان کے خون کی چھینٹے اس آیت پہ پڑی ہوئی ہیں. آج بھی ترکی کے کسی، غالبا ترکی ہی میں، میوزیم میں یہ قرآن موجود ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب لوگوں نے آپ کی قدر نہ کی، اللہ ان کو بچا کے وہاں لے گیا. کل اللہ نے کفایت کی ہے تو اللہ آج بھی کفایت کرتا ہے اپنے ایمان والوں کی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سنتا ہے اور وہ جانتا ہے. یہاں اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے اور ہم سب کو، آج کے دور کے لوگوں کو، حق بیان کرتے جاؤ، پیغام پہنچا دو، لوگ مانے نہ مانے اللہ آپ کی مدد کرے گا. کرو کیا؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ربانی بن جاؤ. ومن احسن من اللہ صبغتا، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت رنگ کس کا ہے؟ ونحن له عابدون، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اللہ کے رنگ میں رنگو، اللہ والے بن جاؤ. یہ ہے وہی بات جس کو عبودیت کا رنگ بھر لو. یہاں لفظ صبغ ہے، سواد باغ عین، رنگ کو کہتے ہیں. رنگ عربی میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک نیچرل کلر، جیسے گائے بھینس بکری کا قدرتی رنگ ہے، اس کو لون کہتے ہیں. کہاں پڑا؟ ماں لون. یہاں آگے صبغہ کہتے ہیں آرٹیفیشلی چڑھایا جایا رنگ. جیسے ڈائرز کی مثال لے لے کہ جب رنگ کی بات ہو تو اللہ کا رنگ بناؤ. یہاں اللہ کا دین محاورے کے اعتبار سے اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ اس طرح کہ قبلنا صبغت اللہ، ہم نے قبول کیا اللہ کا رنگ. اصل میں تو اس کے پیچھے ہسٹری ہے. یہود اور نصارہ پیدا ہونے والے بچے کو پیلے رنگ میں رنگتے نہلاتے ہیں اور اس کو بیپٹائز کرنا کہتے ہیں. نصارہ میں تو بچپن میں کر دیتے ہیں. جیوز ویسے تو کسی کو اسلام میں، کرسچینٹی میں قبول نہیں کرتے، سوری، جیوز کسی کو یہودی قبول نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بون یہودی ہونا چاہیے. لیکن ان کے یہاں ایک رسم ہے بپتسمہ کے نام کی، تو اس میں وہ پیلے رنگ میں بچوں کو ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ یہ عیسائی ہو گئے. ایک سیرمنی ہے. اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا نہ تو پیلا رنگ اور نہ سبز رنگ. رنگ اللہ کا رنگ ہے، اور وہ کون سا رنگ ہے؟ جو عبادت کے ساتھ آتا ہے. آپ اگر نوٹ کریں تو پیچھے سے آیتیں چل رہی ہیں، نحنو مسلمون، مسلمون کا کئی دفعہ تذکرہ آیا نا، یہاں عابدون آ رہا ہے. آگے جا کے مخلص بات رنگ کی کریں گے. اللہ کا بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ایسا بندہ تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہر رنگ سے آزاد ہو، فرقہ واریت سے آزاد، معاشرے اور وقت کے بدلتے تقاضوں سے آزاد، مشرق اور مغرب کے رنگ سے آزاد. یہ میرا مشرق والا رنگ روپ ہے، یہ میرا مغرب والا رنگ روپ ہے، یہ میرا مسجد میں جانے والا ڈریس ہے اور یہ میرا پارٹی میں اور کسی میٹنگ میں جانے والا ڈریس ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایک ایسا گروہ تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہر رنگ سے پاک ہو، آزاد ہو. فطرت کا رنگ، آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں رنگ سے کیا ہوتا ہے، اللہ چاہتے ہیں مسلمان دکھے. اور نوٹ کر لیجئے کہ آج جتنے مسلمان دنیا میں موجود ہیں، کئی بلین، لوگوں کو کیسے پتا چلے گا یہ مسلم ہے؟ ان کے رنگ سے پتا چلے گا. لوگ کہتے ہیں رنگ سے کیا ہوتا ہے، اندر سے فلاں بڑا نیک ہے. کوئی سبزی والے کے پاس آ کے کہے کہ مجھے تربوز دے دو، اور وہ اس کو خربوزہ پکڑا دے، کہتے ہیں لے لو یہ تربوز ہے. وہ کہے گا نہیں تربوز نہیں، یہ خربوز ہے. وہ کہے گا اللہ کے بندے یہ تربوز ہے. وہ کہے گا نہیں خربوز ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں نہیں رنگ سے نہیں ہوتا، اس کو کاٹو اندر سے یہ خربوزہ ہی ہوگا. کوئی مانے گا؟ آپ کہتے ہیں فریش سبزی دو، झुरियों से भरी हुई शिमला मिर्च को पकड़ा दे। वो कहता है ये बासी कहता नहीं ले जाओ, बाहर से कुछ नहीं होता, इसके अंदर से ये बड़ी फ्रेश है। कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। कि इस्लाम मुसलमान अपने रंग रूप से दिखता है, पहनते क्या है, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, लाइफस्टाइल क्या है, जीते कैसे हैं, मरते कैसे हैं, शादियां कैसे करते हैं, आपका रंग रूप क्या है, आपका घर क्या दिखा रहा है, आपका ड्राइंग रूम क्या शो करता है, आपकी जिंदगी के अंदर किस चीज की अहमियत है, ये आपके इस्लाम के जाहिर से दिखती है। आज कितने मुसलमान हैं, चलिए मैं मिसाल देती हूँ, कोई मुझे आप नाम लें कि यहाँ कोई ऐसा पब्लिक इवेंट होता है जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम बहुत सब जमा हो, कोई इवेंट, कोई किसी मौके का।
ग्लोबल पीस एंड यूनिटी इवेंट।
ठीक है, ये ग्लोबल पीस के नाम पे इन्होंने कहा। हम एक ट्रेन स्टेशन की मिसाल लेते हैं। ट्रेन स्टेशन ऐसी जगह होती है ना, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब जाते हैं। आप इस इलाके के ट्रेन स्टेशन पे देख लें, दिन में कई हजार मुस्लिम भी गुजरते होंगे, कई नॉन मुस्लिम भी। ये बताइए कि वहां से जितने मुस्लिम्स गुजरते हैं, क्या वहां मौजूद नॉन मुस्लिम्स को ये पता चल सकता है कि इनमें से किसने नमाज सुबह पढ़ी थी, किसने नहीं पढ़ी? नहीं पता चलेगा। रोजे का पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। हज करके आए हैं कि नहीं, कितना सदका करके आए हैं, नहीं पता चलेगा ना। किस चीज से पता चलेगा? उनके हाल हुलिये से पता चलेगा, उनके तौर तरीके से पता चलेगा, उनके अखलाक से पता चलेगा, उनकी आजजी मॉडेस्टी, उनको उनको पेश करना खाना, हॉस्पिटैलिटी, इससे पता चलेगा ना। तो क्या आज मुसलमान दिखाना पसंद करते हैं? जितना आज के दौर में शैतान ने मुसलमानों को लूटा है ना, वो ड्रेस कोड से लूटा है। आपको बुरा लगे तो मुझे माफ कर दें। आज की औरतों को वही चुस्त और गंदे और नंगे लिबास पहना के, जिसमें जिस्म का एक फिगर ना छुपे, उससे लूटा के आओ दिखाते हैं तुम किसके रंग में रंगे हुए हो। हम गैरों के रंग में रंग के आते हैं उनके मुल्कों में, हम तो अपने मुल्कों में बैठे बन के रंगों में रंगे हुए, उनके मैगजीन देखते हैं और उनकी मॉडलिंग देखते हैं और उनकी अदाकारों और आर्टिस्टों को देखते हैं। किधर है रंग? जब मुसलमान अपने रंग रूप पे फखर करेगा तो समझ लें ये वो गिरोह तैयार हो गया, जो सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिन अल्लाह। आप कहते नहीं नमाज तो पढ़ती है ना, वो मेरा बच्चा नमाज तो पढ़ता है, वो किसने देखनी है आपकी मेरी? वो तो मेरा और अल्लाह का मामला है, वो तो आपके बच्चे का और अल्लाह का मामला है। चलते फिरते शहर में वो किन के इश्तेहार बने हुए हैं, हमारी कमाइयां, वो भी सूद खाएं हम भी सूद खाएं, किसका रंग चढ़ा हुआ है? वो भी हराम खाए हम भी हराम खाए, वो भी ड्रिंक करें हम भी ड्रिंक करें, वो भी पार्टीज होटलों में बाएं हाथ से खाएं हम भी खाएं, किसका रंग चढ़ा हुआ है? याद रखिए इस्लाम कोई जाहरी रंग रूप का नाम नहीं है, इसके अंदर बंदे की पूरी शख्सियत का रंग है, अखलाक, किरदार, उसकी आंखों में हया होती है। इसे सिर्फ ड्रेस कोड भी ना मुराद लीजिएगा। आप सर पे एक कपड़ा पहन के नीचे से जिस्म, और आप पूरे पूरे निकाब में छुप जाएं और छिछोरी हरकतें करते फिरें, वो भी इसमें आता है। ये तो असल में बंदगी का रंग है, आजजी का रंग है, और मुसलमान के चेहरे पे एक बंदगी होती है। पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फतह में, अगर जिंदगी रही, के सहाबा कौम थे सीमा हम, उनके चेहरों पे तुम्हें इस्लाम की निशानियां दिखती हैं। आज भी आप आजमा के देखें, मैं किसी को हर्ट नहीं करती ना, मैं किसी का मजाक ना उड़ाती हूँ अल्लाह के हुक्म से, लेकिन आप कहीं भी राह चलते कि एक सच्चे मोमिन पे आपकी नजर पड़ जाए, बारिश चेहरा, उसके चेहरे के इत्मीनान और खुशी और आंखों में हया, और एक अल्ट्रा मॉड बिगड़े हुए यंग लड़के का हुलिया देखें, आपको दोनों में फर्क दिखता है? जमीन आसमान का फर्क दिखता है। सच्चा इस्लाम आंखों से दिखता है, नजरें झुकाने से दिखता है, चेहरे पे सुकून होता है, इत्मीनान होता है। अब करें क्या, रंग तो सब पे दूसरे चढ़ गए। तो आइए थोड़ा सा एक डायर के पास चलते हैं। आप सोचे कि एक रंग है, कपड़े पे रंग चढ़ा हुआ है सुर्ख, आप उसको सबज कराना चाहते हैं, क्या करेंगे? डायर को कहते हैं कि भाई इसको सबज कर दो, वो क्या कहेगा? पहले तो देखेगा कर भी सकते हैं कि नहीं, चढ़ सकते हैं ना, फिर वो कहेगा सबसे पहले इसका रंग उतारूंगा, सुर्ख पे ब्लीच डालेगा तो वो व्हाइट होगा, फिर उसको सब्ज करेगा। और अगर सुर्ख के ऊपर ही सब्ज चढ़ाएंगे ना आप, तो वो सब्ज नहीं होगा, वो पर्पल हो जाएगा। इसी तरह सबसे पहले हमें गैर रंग उतारने पड़ते हैं, ये रंग काट है, ये ब्लीच पड़ रहा है आपके ऊपर कुरान की आयतों का, जो पहले आपके ऊपर से से वो सारी काई होती है। और याद रखिए, हम में से हर एक किसी ना किसी रंग में चढ़ा हुआ है। सफेद तो कोई होगा, किसी पे बिरादरी का रंग, खानदान का रंग, मुआशरे का रंग, दौलत का रंग, सोसाइटी का रंग है चढ़ा हुआ है। एक वो है जो बिल्कुल एक मजहबी दीनदार माहौल में पैदा हुआ, जिसको इखलाक और इबादात के साथ माँ बाप ने बहुत अच्छा रेस किया, उनको कुरान पढ़ के कोई चुभन नहीं होती, वो तो मुस्कुराते हैं। आगे मुझे आज याद आ रही है सूरह नहल में गालिबन के कुछ है, वो कुरान सुन के हंसते हैं, खुश होते हैं, मुस्कुराते, कहते हैं वाह मेरे रब ने खैर उतारी। और किसी से पूछो क्या नाजिल किया, तो उनको कुरान गले की फांस लगती है। जिस आयत पे अमल होता है उसको सुन के हम मुस्कुरा नहीं रहे होते अंदर ही अंदर, और जिस पे अमल नहीं होता तो झुरझुरी आ रही होती है, ये रंग कट रहा होता है। तो जिस चीज पे अमल नहीं होता, पहले तो कुरान हमारा रंग उतारेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि वो उसको भट्टी में डालता है, खाली पानी में घोल के रंग में सफेद कपड़े वाला दे दे, थोड़ी देर में घर जाएंगे देखेंगे तो वो रंग उड़ जाएगा, कच्चा रंग तो नहीं होगा, भट्टी में पकाता है। फिर अब देखिए वो रंग फ्रेस जो है ना, उसको पूरा डूबता है, डुबोता है, आप इमेजिनेशन में लाए, कपड़े का एक कोना भी बाहर रह जाएगा ना तो वहां रंग नहीं चढ़ेगा। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो क्या कर रहा होता है, यूं निकाल के ना, तो वो उस आग के पास जाके उसको सुखा के फिर मैच करता है आपके सैंपल के साथ। कुरान और सुन्नत से मैच करना पड़ेगा अपने आप को। हाँ, फिर आप देखिए कि कुछ रंग ऐसे होते हैं कि डार्क फिरोजी, एक दौर था कहते थे ये रंग सिर्फ कच्चा ही होता है या इस तरह के मामलात में होगा, अब वो फिरोज पक्का करेंगे ना थोड़ा सा डल होगा लेकिन पक्का तो होगा। तो बाज दफा कुफर के रंग बड़े पंपी, ग्लैमरी और खूबसूरत एंड वॉर वॉर हाव भाव, लेकिन कच्चे रंग होते हैं, उसको पक्का करेंगे तो खूबसूरत नहीं होगा लेकिन बहरहाल वो आपके कपड़ों पे नहीं लगेगा। फिर आप देखिए कि जो रंग चढ़ता है ना उसके ऊपर, कपड़े के ऊपर, उसमें अगर आप एक रंग का कपड़ा बनाए ना यूनिकलर तो सादा सा लगता है, लेकिन आप उस कपड़े के ऊपर मल्टी कलर करवा लें, टाई एंड डाई, कई रंग कई नहीं, बहुत खूबसूरत लगता है, टाई एंड डाई बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह को जहर लगता है। रंग बिरंगा मुसलमान, इधर से क्रिश्चियनिटी का रंग, इधर से इस्लाम का, इधर से ज्यूइज्म का रंग, रंग रंग रंग, ये सारे रंग अल्लाह को तो कौन से अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल प्लेन हो। फिर आप देखिए, अब ये सारी बातों को बाद में आप जब सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आपको सारी बात वैसे ही समझ आ जाएगी। बस दफा कपड़ा जल भी जाता है रंग डालने के बाद, बाद में छेद आ जाते हैं, कहते हैं जी कि इसमें तो बहुत ब्लीच डल गया, रंग डल गया। इसी तरह बाज दफा कुरान और दीन की तरफ जब बात है तो रूह में छेद पड़ते हैं। फिर एक और चीज देखिए कपड़े की खसूसियात में, कि सबसे ज्यादा खुश अच्छा रंग किस पे आता है जल्दी, प्योर कपड़े पे, प्योर कॉटन, प्योर सिल्क पे रंग बहुत अच्छा आता है। जो रंग कहीं ना चढ़े दर्जी क्या कहते हैं, बाजी वो कपड़ा लेके आए, प्योर सिल्क लाएंगे तो आएगा। इसी तरह जिस बंदे की फितरत स्लीम रहती है बड़ी जल्दी रंग लाता है, और जिसने वैक्सिंग की भी है, कुछ डायर्स को आपने देखा होगा कि वो वैक्स लगा देते हैं कि यहां रंग ना आए, जब वो सारा दुपट्टा रंग के निकालते हैं वो जगह सफेद होती है। तो कुछ लोगों ने अपने ऊपर इतनी ज्यादा वैक्सिंग की होती है गुनाहों की जिंदगी और दुनिया के रंगों की, कि वो उस पर आने नहीं चाहते। अब बाकी चीजें आप खुद सोचें, कल हम डिस्कशन में करेंगे, लेकिन अगर इस्लाम का और अल्लाह का रंग चाहिए तो कुछ चोट तो खानी पड़ेगी। ये जो आप इस वक्त कुरान सुन रहे हैं ये सब में भट्टी में पक रहे होते हैं, डिसिप्लिन के साथ, सब्र के साथ, भूख के साथ। इस्लाम भी गलाता है बंदे को, अंदर से अल्लाह ताला तोड़ता है। जब हमारे अंदर एक खूबसूरती का रंग आएगा ना फिर बात होगी। रंग चढ़ता किस पे नहीं, काले रंग पे कोई रंग नहीं चढ़ता। इसी तरह जो इस्लाम की एक एक कमल से काला हो चुका हो, पूरी तरह एब्जॉर्ब कर चुका हो ना, और इस्लाम को वो ईस्ट में जाए वो नॉर्थ में जाए, अल्लाह कहते हैं कि ला शर्कियत वला गर्बिया, सूरत नूर में आप पढ़ेंगे, उस पे कोई रंग नहीं आता। वो किसी, अगर खुदा ना खास्ता किसी मौके पे नाइट क्लब के पास से भी गुजरेगा ना तो वहां भी अच्छी बात करके आएगा। ये जो हम आते ही तुम्हारा रंग बदल जाता है ना, कुछ को तो दूर की हवा पड़ती है तो पास पड़ा तो पट्टे पे कुछ ना कुछ रंग आ जाता है। ये हमारे रंग अच्छे हैं। आप कहते बच्चों को कहाँ ले जाएं, सऊदी अरब ले जाएं, जहां मर्जी ले जाएं, उनको इस्लाम का दे दें। ये गाजी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जौके खुदाई का रंग दें अपने आप को और बच्चों को, फिर पूरी दुनिया आपके लिए काबा है इंशाल्लाह, और पूरी जगह आपके लिए मदीना मनवरा है, तैयबा है, दिलों को पाक, सोचों को पाक करें। और तकवा के आने से इसका आगाज होता है। अब ये स्टेप्स हम कल डिस्कशन में करेंगे, लेकिन यहाँ सबक की आखिरी आयतें देख लेते हैं कि अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है कि अल्लाह के रंग में रंगे जाओ। लेकिन जब बंदा अल्लाह वाला बनता है ना, तो लोग लड़ने लगते हैं, कहते फनेटिक बातों में आ गई, फिर शुरू हो गई ईद के बाद क्लासें, आ जाके फिर उस्तानी बन रही है, फिर नसीहतें कर रही है। तो अल्लाह सिखाते हैं कुल तुहाजूनना फिल्लाह, इनसे लड़ना नहीं है, बस ये कहना क्या तुम हमसे लगे मामले में लड़ते हो, यानी मैं अल्लाह की बात मान रही हूँ और आप मुझसे लड़ रहे हैं, मैं अल्लाह वाली बनना चाहती हूँ, आप मुझसे लड़ते हैं। वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, वो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, क्या आप मुसलमान नहीं है, आप कैसे इस्लाम नहीं है। वलना आमालुना वलकुम आमालुकुम, और आपके लिए आपके अमाल, हमारे लिए हमारे अमाल, वनाहनु लहू मुखलिसून, और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। बस हो ये रहा है कि आप मुखलिस बन रही हो, ये इखलास क्या है कल बताऊंगी डिस्कशन में, इसकी शायद 20 से 25 डिफरेंट तफसीरें हैं, लेकिन आप सिर्फ इस वक्त देखें पहले मुस्लिमून, फिर आबेदून, और अभी तीन स्टेप्स हैं आपके रंग के अंदर रंगने के। मुस्लिमून क्या था? कच्चे रंग वाले, इधर उधर के भटके हुए, नमाज रोजा था लेकिन अंदर कुछ नहीं था, बात माननी शुरू की, बात तो मानो मुस्लिम तो बनो, सहाबा का तर्जा भी यही था, मुस्लिम बन जाते थे। समझ आए ना आए, कल देखेंगे आप किबले की तब्दीली, कोई समझ नहीं आई किबला क्यों तब्दील हुआ, मुड़ गए तो मुड़ गए, बंदा मोमिन भी ऐसा ही होता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर आबेदून, फिर इबादत में लज्जत आती है, और आखिर में मुखलिसून, सबसे कट के खालिस प्योर बंदा बंदा। बहुत वक्त लगता है, टाइम लगता है, लेकिन आ जाता है ये वक्त। और जिनके अंदर ये रंग नहीं लड़े होते हैं, वो सिर्फ लड़ते हैं, निस्बतों पे नाम लेते हैं। इसलिए काम तकुलू न इन इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक व याकूब व लसबात कानू हूदन व नसारा, आप कहेंगे यह दोबारा आ गई, नहीं वहां उनका जुमला था कि यहूदी और नसरानी थे, यहाँ अल्लाह उनको एक किस्म की चोट लगा रहे हैं। अच्छा जी, तुम कहते हो कि इब्राहिम इस्माइल इसहाक और याकूब और उनके औलादे यहूदी और नसरानी थे, हैरत हो रही है तुम पे, वो तो रब्बानी थे। कुल अंतुम आलम अमिल्ला, कुल अंतुम आलम अमिल्ला, क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह, मुराद ये कि अल्लाह ज्यादा जानता है। वमन असलम मिम्मन कतम शहादतन इंदहू मिन अल्लाह, और उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ से आई हुई गवाही को छुपाए। क्या गवाही छुपाते थे? नबी सल्लम की आमद की गवाही छुपाई उन्होंने, शरीयत को आज छुपाए बैठे हम भी। कोई बात नहीं, आज का दौर है, ये करना पड़ेगा, ये मुश्किल नहीं, ये वो नहीं, ये कर ही नहीं सकते, तो दीन को उन्होंने छुपा लिया था। अल्लाह ताला इसी की बात करके कहते हैं कि तुम अपनी बातों पे खुद गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है जो तुम अमल करते हो, दूसरों से छुप सकते हो, अपने आप से नहीं छुपते। और अब इन नबियों के साथ नस्बत पे जन्नत की उम्मीद छोड़ दो, आखिरी दफा कहा जा रहा है कि तिल का उम्मत कद खलत, वो एक उम्मत ही गुजर गई, वो नबी थे, वो नेक लोग थे, गुजर के। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए था वो जो तुम उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए जो तुम कमाते हो। ये है वायद जिस पे मैंने कहा कि लोग अक्सर कोट करते हैं औरत और मर्द के कमाने पे, क्योंकि यहाँ लहा मुअन्नस के लिए, उम्मत के लिए जो आया, कसबत ता उसके लिए आ गई, और लकुम मुजक्कर की ज़मीर है, माँ कसब तुम तुमने कमाओ। कहते देखो अल्लाह कह रहे औरत जो मर्जी कमाए, मर्द जो मर्जी कमाए, हालांकि ये कसब कमाइयाँ नेकियों और बदियों की हैं। वला तुसलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा जो वो अमल करते थे, यानी वो अच्छे कर गए या बुरे कर गए, तुम्हें ना उसका क्रेडिट मिलेगा ना तुम्हें उसका डेबिट मिलेगा। हर बंदा अपने अमाल के अंदर, तो आप देखेंगे पूरे सबक ने हमें एक सबक तो सिखा दिया है, रब्बानी बन जाओ। लोग क्या कर, किस रंग में रंगे हैं, लोगों को तुम्हारा कौन से क्या बुरे, हु केयर्स, ये देखो कि अल्लाह को मैं कैसी लगती हूँ। फिरका वारियत फैलती ही तब है जब हम लोगों की नजरों से खुद को देखते हैं, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, लोग मुझे कितना लाइक करते हैं। आज ये दीन के जो इतने रंग बिरंगे एडिशन दिख रहे हैं ना आपको, नाम लेने को दिल नहीं करता, लेकिन इतने दिन है, इतने एडिशन है, उसकी वजह क्या है कि लोग अल्लाह वाला नहीं बनते। आज अगर अपनी मौत याद आ जाए ना, कब्र की पहली रात, तो सारे फिरकेबाजियां खत्म, लोग मुझे पसंद करते हैं कि नहीं, मैं कैसा लगता हूँ इन कपड़ों में, कफन सबका सफेद ही होता है, वो नहीं ब्रांडेड होता, उसके अंदर नहीं को बाजू कटे होते और उसके अंदर टांगों पे फाहे नहीं लगे होते, और वो भी कोई इतना सी थ्रू और टाइट नहीं होता कि मैयत कैसी लग रही है। कब्र तो एक खुली, एक कफन तो खुली चादर होती है, ऊपर डाल देते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा दिल बदल दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। लिखिए अपनी फीलिंग्स, ऑनलाइन वाले रूम में लिखना चाहें तो लिखते जाएं। बहुत खूबसूरत आई हुई हैं, और भी शेयरिंग्स कुछ ब्लॉग्स पे भी होती हैं, कुछ ईमेल्स में आती हैं, सारी शेयर नहीं हो पाती इधर, लेकिन आप लोग बाद में जाके पढ़ा करें वहां से। जी हुमा, आपने क्या सीखा आज के सबक से? जी शाहीन, आपने क्या सीखा शाहीन? कुछ तो आजमाइशें आएंगी ना। वो कहते ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हालांकि ये पत्थर चुभते कोई नहीं है, अच्छे लगते हैं, दूसरों को चुभ रहे होते हैं जो नहीं चल रहे होते उस पे। इधर से जी, आप सदफ, आपने क्या सीखा? अपने रंग काट के अल्लाह का रंग चढ़ा ला है। सही, बिल्कुल जी। पिछली लाइन में से आप, नाम नहीं मुझे आता, आपके साथ इधर कौन है? फरहत है? आप नहीं, आपका नाम क्या? जी मायदा जी, आप प्लीज। जी बच्चों को साथ लेकर चलना है। तो बहरहाल आप लोग कमेंट्स लिखिए, अपनी शेयरिंग दें, और ब्रेक है आपकी 20 मिनट की ब्रेक है उसके बाद, क्योंकि कुछ लोग जब नमाज शुरू करते हैं फिर बाद में मैं देखती हूँ कि फिर ब्रेक का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा एक ब्रेक मिलता है ना। ठीक है, तो क्लास के फौरन बाद इंशाल्लाह हम जमात करेंगे और कोशिश करेंगे इस बात में कि हमारा साल आगे ना ऊपर टाइम उस पे से जाए, क्योंकि नमाज का वक्त इसमें आगे है। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।